अगले दिन राइन ग्रीन और मरे ग्रीन अपने घोड़ों पर सवार होकर शिकार के मैदान कायास पर्वत पर पहुंचे। ये पर्वत एलिस अकादमी का विशेष शिकारगाह था। प्रत्येक वर्ष अकादमी अपने शिक्षकों को जांच के लिए पर्वत पर भेजती थी तथा जादुई जानवरों के वितरण और पाए गए जादुई पौधों के स्थानों को अभिलेखागार में संकलित किया जाता था ताकि नए वर्ष के अकादमी कार्यों के लिए संदर्भ उपलब्ध कराया जा सके।
अकादमी के नियंत्रण में कायास पर्वत में जादुई जानवरों का उच्चतम स्तर स्तर 4 था, लेकिन वे सभी पर्वत श्रृंखला की गहराई में थे और विशेष परिस्थितियों के बिना ये स्तर 4 जादुई जानवर अपने क्षेत्रों को नहीं छोड़ेंगे।
कायास पर्वत के प्रवेश द्वार पर कई छात्र अकादमी के कार्य कर रहे थे और अनुभव प्राप्त कर रहे थे और वरिष्ठ छात्रों ने प्रवेश द्वार के पास स्टॉल लगाए थे जहां वे आपूर्ति बेच रहे थे और जादुई सामग्री खरीद रहे थे, जिससे वहां बहुत चहल पहल थी।
मरे ग्रीन घोड़े से उतरे, अपनी आराम की हुई जांघों को रगड़ा, अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और राइन ग्रीन के पीछे पीछे घोड़ों को अस्तबल में ले गए, फिर लेवल 3 की एक इमारत में चले गए।
छात्र कार्य कक्ष, 2 लोग, कोई काम नहीं, शिकार करने के लिए पहाड़ में प्रवेश कर रहे हैं।
राइन ग्रीन और मरे ग्रीन ने अपने छात्र कार्ड निकाले और टास्क हॉल में पंजीकरण कराया। लगभग उनकी ही उम्र की एक छात्रा ने उनके छात्र कार्ड लिए और उन्हें मैजिक एरे पैटर्न से ढके एक छोटे से मंच पर रख दिया, फिर औपचारिक तरीके से पूछा, क्या आप पहाड़ में प्रवेश के नियम जानते हैं? हाँ। क्या आप रात को पहाड़ पर रुकेंगे? नहीं। कुछ प्रश्न पूछने के बाद सेवारत लड़की ने काउंटर के नीचे से 2 सिग्नल फ्लेयर्स निकाले और उन्हें छात्र कार्डों के साथ सौंप दिया। मरे ग्रीन उन्हें लेने के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद, आपका स्वागत है। यदि आपको कोई खतरा नजर आए तो सिग्नल फ्लेयर फायर कर दीजिए और पर्वत रक्षक शिक्षक इसे देखते ही तुरंत आपकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे। टास्क हॉल से बाहर निकलते हुए मरे ग्रीन ने अपने पास रखे उपकरणों की जांच की। वो चमड़े का कवच पहनते थे, उनके पास 100 पाउंड वजन का लंबा धनुष और तीरों से भरा तरकश था। उसकी कमर पर एक और एक हाथ वाली तलवार और दूसरी ओर एक जादुई क्रिस्टल गन थी और साथ में उसने एक पानी की बोतल और कुछ सुविधाजनक भूख मिटाने वाला स्मोक मीट भी रखा था। उसने अपने बड़े भाई राइन ग्रीन की ओर देखा, जो केवल आधा शरीर कवच पहने हुए था और 2 हाथों वाली तलवार लिए हुए था तथा उसकी पीठ पर एक आपातकालीन पैक लटका हुआ था। राइन, ये राइन ग्रीन है। पहाड़ के प्रवेश द्वार पर बहुत से छात्र थे। जब राइन ग्रीन और मरे ग्रीन वहां से गुजरे तो जिन लोगों ने राइन ग्रीन को पहचाना उन्होंने उनका नाम पुकारा। तभी रेंजर की पोशाक पहने एक वरिष्ठ छात्र तेजी से राइन ग्रीन की ओर बढ़ा। हाहाहा, राइन, तुम पहाड़ में क्या कर रहे हो? मैंने एक कार्य लिया है। यदि आपके पास कोई कार्य नहीं है तो आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते?
मैं तुम्हें कार्य के इनाम का 30% दूंगा। नहीं, मैं आज अपने भाई को शिकार पर ले जा रहा हूँ। हम पहाड़ के अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आऊंगा।
सीनियर के निमंत्रण का सामना करते हुए राइन ग्रीन ने सीधे मरे ग्रीन की ओर इशारा किया और सिर हिलाकर मना कर दिया। राइन ग्रीन के बगल में मरे ग्रीन को देखकर सीनियर थोड़ा निराश हुए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, अगली बार यदि आप लोग फ्री हों तो साथ साथ चलें। फिर उन्होंने उनसे विदा ली और अपनी टीम को पहाड़ पर ले गए।
अन्य लोग जो राइन ग्रीन को साथ में कार्य करने के लिए आमंत्रित करने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि राइन ग्रीन पहाड़ में बहुत अंदर जाने या जादुई जानवरों का शिकार करने की योजना नहीं बना रहा था। उन्होंने केवल राइन ग्रीन का अभिवादन किया और तितर बितर हो गए।
भाई, आप तो बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। क्योंकि मैं काफी मजबूत हूँ, राइन ग्रीन ने विश्वास से कहा। यह मत देखिए कि कैसे राइन ग्रीन को घर पर प्रशिक्षण के दौरान काउंट ग्रीन द्वारा अनगिनत बार पीटा गया, लगातार उसे बेकार कहकर कमतर आंका गया, लेकिन वॉरियर्स अकादमी में लेवल 3 में नए प्रवेश पाने वाले असाधारण युद्ध अनुभव वाले इंटरमीडिएट योद्धा के रूप में वह एक सुनहरा पैर था जिसे हर कोई पकड़ना चाहता था। एलिस अकादमी, वॉरियर अकादमी और मैजिक अकादमी दोनों के लिए स्नातक स्तर का मानक स्तर 3 था, जिसका अर्थ था इंटरमीडिएट योद्धा या इंटरमीडिएट जादूगर। इसलिए राइन ग्रीन ने पहले ही स्नातक स्तर के लिए मानदंडों को पूरा कर लिया था। हालांकि राइन ग्रीन को लगा कि वह अकादमी में अभी भी अधिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, अपनी साधना में सुधार कर सकते हैं, उपयोगी प्रतिभाओं का चयन कर सकते हैं और अपने भविष्य की टीम का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी स्नातक होने का विकल्प नहीं चुना। मरे, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें शिकार पर क्यों लाया हूँ?
मुझे नहीं पता। तार्किक रूप से मरे ग्रीन के भावी प्रतिद्वंद्वी योजनाओं और षड्यंत्रों में कुशल लोग होंगे, फिर भी आज उसका सामना भयंकर और क्रूर जानवरों से था।
क्या उसे महल की साजिशों में प्रशिक्षण लेने, दूसरों को फंसाने में अपने कौशल को सुधारने या जहर के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए 2 बूढ़े लोगों को नहीं ढूंढना चाहिए? राइन ग्रीन ने मरे ग्रीन की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, मरे, जब से तुमने आखिरी बार शिकार किया था, जब तुम अपने घोड़े से गिर गए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तब से मैंने देखा है कि तुम में लगातार बेचैनी का भाव बना रहता है, खासकर यात्रा के दौरान। तब से आप हमेशा गाड़ी में ही सवार होते रहे हैं और कभी घोड़े पर सवार नहीं हुए। जब हम अभी यहाँ घोड़ों पर सवार होकर आए थे, तो मैंने देखा कि आपकी घुड़सवारी की कला में काफी गिरावट आ गई है और आप में डर भी लग रहा था। आप डरते हो, आने वाले दिनों में भय आपको अधिक सतर्क बना सकता है, लेकिन यह आपकी मृत्यु को भी तेजी से बढ़ा सकता है। हमारा परिवार अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव करते हुए युद्ध से उभरा है। युद्ध में केवल बहादुरी से आगे बढ़ना, प्रतिद्वंद्वी को कुचलना और प्रतिरोध करने की उनकी इच्छा को तोड़ना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। हम वहां एक भेड़िया गश्त कर रहा है, जाओ इसे मार डालो।
राइन ग्रीन, जो मरे ग्रीन के साथ अपने जीवन के अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा कर रही थी, ने अचानक जमीन से एक पत्थर उठाया और गश्त कर रहे भेड़िए पर फेंक दिया, जिससे वह चीखने लगा।
आओ, भेड़िए को चोट लगी और वह अपने अंगों को थोड़ा मोड़कर हमला करने के लिए तैयार हो गया तथा उन दोनों को भयंकर रूप से घूरने लगा। ऐसा करने के बाद राइन ग्रीन ने अपने पैर आगे बढ़ाए और मरे ग्रीन से 10 मीटर से अधिक पीछे हट गए, शांत दिख रहे थे। क्या मैं अब लड़ाई से पहले चिकन सूप खत्म करने के लिए आवेदन कर सकता हूँ? मरे ग्रीन अपने दिल में लगातार शिकायत करते रहे, लेकिन उनके हाथ नहीं रुके। उसने जल्दी से अपना धनुष बाण नीचे उतारा, तीर चढ़ाया और धनुष खींचकर तीर की नोक सीधे भेड़िए की ओर तान दी। भेड़िया तीर की मारक क्षमता से अवगत हो गया और तुरंत छोटे छोटे कदमों से चलने लगा। 30 मीटर, काफी करीब। मरे ग्रीन ने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत तीर चला दिया। धनुष से छूटा तीर फुफकारती ध्वनि के साथ भेड़िए के पास से निकल गया। मरे ग्रीन, जो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे, ने तुरंत दूसरा तीर निकाला। एक खूंखार जानवर होने के नाते भेड़िया कैसे बैठा रह सकता था और मारे जाने का इंतजार कर सकता था? अचानक उसने अपने चारों अंगों से बल लगाया, जैसे कि एक ग्रे बिजली का बोल्ट, और वह तेजी से मरे ग्रीन की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते भेड़िए को देखकर मरे ग्रीन ने एक और तीर चलाया। शायद दूरी कम होने के कारण या शायद उसके कौशल के कारण ये तीर भेड़िए के अगले कंधे पर लगा। आओ, तीर लगने से भेड़िए ने दर्द भरी कराह निकाली, अपना शरीर घुमाया और भागने की कोशिश की। लेकिन तभी मरे ग्रीन का तीसरा तीर भेड़िए की पीठ के निचले हिस्से पर लगा। भेड़िया अत्यधिक पीड़ा में 2 कदम भागा और फिर जमीन पर गिर पड़ा और लगातार चिल्लाने लगा। हुश, मरे ग्रीन के आखिरी तीर ने उसकी पिछली गर्दन को छेद दिया और तीर का सिरा उसके गले से बाहर निकल आया। भेड़िए की चीख अचानक बंद हो गई, जिससे उसकी पीड़ा समाप्त हो गई। मरे ग्रीन को 4 तीरों से भेड़िए को निर्णायक रूप से मारते हुए देखकर राइन ग्रीन ने भौहें चढ़ाई, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मरे ग्रीन की शिकार करने की क्षमता उस गंभीर चोट की घटना के बाद से न केवल कम हुई है, बल्कि उसमें काफी सुधार भी हुआ है। उसके निशाने की निर्णायकता और तीरंदाजी की सटीकता दोनों में सुधार हुआ था। यह अच्छी बात है, लेकिन अब मैं क्या कहूँ? राइन ग्रीन के आकलन के अनुसार मरे ग्रीन की क्षमता के साथ सबसे अच्छा परिणाम ये होगा कि वह इस जंगली भेड़िए को बेतहाशा मार देगा, और सबसे खराब स्थिति में राइन ग्रीन को आगे आकर मदद करनी होगी।
उस समय राइन ग्रीन ने अपने द्वारा तैयार किए गए साहसी और भयावह हनुनय शब्दों का सेट पेश किया और फिर उसे आसपास के क्षेत्र में शिकार करने के लिए ले गया। आज का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
हालांकि मरे ग्रीन ने नियमों के अनुसार नहीं खेला, जिससे राइन ग्रीन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन ये जल्द ही जिज्ञासा में बदल गया। आपका तीर छोड़ना बहुत अधिक निर्णायक था, और आपकी सटीकता पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गई है। क्या आप अभ्यास कर रहे हैं? राइन ग्रीन के प्रश्न का उत्तर देते हुए मरे ग्रीन ने अपने सिर पर थपथपाया। वह भी कुछ हद तक हैरान था कि वह वास्तव में इतना मजबूत था। नहीं, लेकिन तीर छोड़ने से पहले मुझे लगा कि मैं इसे मार सकता हूँ, इसलिए मैंने तीर छोड़ दिया। यह इतना सटीक क्यों था? इस पर मैं भी बहुत हैरान हूँ। राइन ग्रीन ने मरे ग्रीन की आंखों में देखा, उसकी निगाहों में उलझन को देखा, और उसे नहीं लगा कि मरे ग्रीन झूठ बोल रहा है, इसलिए उसने स्थिति को फिर से परखने के लिए मरे ग्रीन को एक और शिकार खोजने के लिए ले गया।
करीब 10 मिनट बाद राइन ग्रीन ने अचानक लात मारी और एक मुट्ठी भर पत्थर उछलकर शाखाओं में जा लगा। एक दर्दनाक चीख के साथ एक तेंदुआ शाखाओं से नीचे गिर गया। सौभाग्य से वह फुर्तीला था और जमीन पर उतरते ही उसने तुरंत अपना शरीर उलट दिया और चारों पैरों पर खड़ा हो गया।
फिर उसने अपना सिर हिलाया, नीचे झुका, अपना मुंह चौड़ा करके अपने नुकीले दांत दिखाए और पास में खड़े 2 अवांछित मेहमानों को डराने वाली नजरों से देखा। लगातार गुर्राहट की आवाजें निकालता रहा, मानो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हो। जाना, राइन ग्रीन ने तेंदुए को देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। उसका सुव्यवस्थित शरीर और चमकदार फर यह संकेत दे रहा था कि यह एक वयस्क तेंदुआ था, जो पिछले जंगली भेड़िए से कहीं ज्यादा ताकतवर था।
राइन ग्रीन की बातें सुनकर मरे ग्रीन, जो पहले से ही तैयार था, 2 कदम आगे बढ़ा, तीर को तीर से लगाया, अपना धनुष खींचा और एक ही झटके में तीर छोड़ दिया। हालांकि सावधान तेंदुआ अपनी मूल स्थिति से दूर भाग गया, तीर को चकमा देते हुए चारों पैरों पर खड़ा हुआ, फिर उछलकर सीधे मरे ग्रीन की ओर बढ़ा। तेंदुए की चाल जंगली भेड़िए से कहीं ज्यादा तेज थी। अपने कदमों में थोड़ी सी हरकत करके उसने मरे ग्रीन के दूसरे तीर को आसानी से चकमा दे दिया और मरे ग्रीन से 20 मीटर आगे पहुंच गया।
इस दूरी पर मरे ग्रीन के पास सिर्फ एक तीर बचा था। पहली बार ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना करते हुए मरे ग्रीन ने अपनी सांस रोक ली। उसकी नजर सामने खड़े तेंदुए पर टिकी थी। अचानक उसने उस पल को साफ देखा जब तेंदुए के चारों अंग जमीन से उठ गए थे। होश, अवसर देखकर मरे ग्रीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तीर चलाया और परिणाम देखने की प्रतीक्षा किए बिना ही अपने हाथ से धनुष नीचे गिरा दिया। एक हाथ से तलवार खींची और उसे सामने की ओर क्षैतिज रूप से पकड़ लिया तथा दूसरे हाथ से बंदूक खींची और सीधे लक्ष्य पर निशाना साधा।
तीसरा तीर हवा में लहराती हुई एक उड़ती मछली की तरह था, लेकिन उसका तीर का सिरा लगातार तेंदुए की छाती पर निशाना साध रहा था। तीर का नुकीला सिरा तेंदुए के चमकीले फर को भेदता हुआ, उसकी मजबूत मांसपेशियों को चीरता हुआ, तेंदुए के तेज धड़कते दिल में जा धंसा। इससे पहले कि तीव्र दर्द महसूस हो, तेंदुए को अचानक लगा कि उसके अंगों में ताकत नहीं रही, लेकिन वह सहज रूप से कुछ और कदम आगे भागा, आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से कुछ उलझन भरी चीखें निकलने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह मरने वाला है, क्योंकि दर्द महसूस होने लगा था। वह जमीन पर लेट गया, मुश्किल से सांस लेने के लिए हौंफने लगा, फिर उसकी सांसें रुक गईं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अचानक ताली की आवाज सुनकर मुरे ग्रीन, जो कि सचेत अवस्था में था, होश में आया। उसने अविश्वास के भाव से तेंदुए को देखा, जिसके हृदय में एक ही तीर लगा था और वह मारा गया था। यह अविश्वसनीय था। क्या उसने ऐसा किया था? हाहाहा, बहुत बढ़िया मरे, तुमने बहुत अच्छा किया। ताली बजाते हुए और दिल खोलकर हंसते हुए राइन ग्रीन मरे ग्रीन के पास गया, अपने दोनों बड़े हाथ फैलाए और उत्साह से मरे ग्रीन के कंधों को थपथपाया। उसकी आंखें उत्साह से मरे ग्रीन की हैरान आंखों पर टिकी थीं। फिर जैसे किसी दुर्लभ खजाने को सहला रहे हों, उसने धीरे से मरे ग्रीन के सिर पर हाथ फेरा, जिससे मरे ग्रीन की रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। आध्यात्मिक शरीर पर कब्जा, मुझे अंततः समझ में आ गया कि आपके तीर इतने सटीक क्यों हैं। ये पता चला है कि आपकी मानसिक शक्ति पहले से ही आध्यात्मिक शरीर पर कब्जा के स्तर तक पहुंच चुकी है। शरीर पर आध्यात्मिक कब्जा, यह क्या बकवास है? लेकिन क्या आप कृपया मेरे सिर को सहलाना बंद कर सकते हैं? इससे मुझे चक्कर आ रहा है और मैं असहज महसूस कर रहा हूं। हाहाहा, तुम्हें चक्कर मेरी वजह से नहीं आ रहा है, राइन ग्रीन ने पलटकर जवाब दिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी हरकतें रोक दी और मरे ग्रीन को एक पेड़ के सहारे बैठकर आराम करने को कहा। बैठने के कुछ ही देर बाद मरे ग्रीन को न केवल चक्कर आने लगा बल्कि तेज दर्द भी महसूस हुआ, जैसे शराब पीने के बाद काम के लिए सुबह जल्दी उठने पर होता है। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? यह एक अच्छी चीज है, मरे ग्रीन को देखकर जो दर्द में अपना सिर पकड़ रहा था, राइन ग्रीन बहुत खुश था। उसने अपने जूनियर की मानसिक प्रतिभा के इतने ऊंचे होने की उम्मीद नहीं की थी। वह केवल एक सप्ताह के लिए स्कूल में था, फिर भी वह शरीर के आध्यात्मिक कब्जे को प्राप्त कर सकता था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां कई प्रथम स्तरीय जादूगर नहीं पहुंच सकते थे, फिर भी वह एक साधारण मानव शरीर के साथ ऐसा करने में कामयाब रहा। शरीर पर आध्यात्मिक अधिकार का अर्थ है शरीर को नियंत्रित करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग करना तथा शरीर को मन के साथ सहयोग करने की अनुमति देना, ताकि वे कार्य कर सकें जो शारीरिक सीमाओं या क्षमताओं से परे हों। उदाहरण के लिए, मरे ग्रीन तेंदुए के दिल में तीर मार सकता था क्योंकि उसका दिमाग पहले से ही लक्ष्य पर लगा हुआ था, लेकिन मरे ग्रीन की अपनी क्षमता उसे लक्ष्य पर निशाना लगाने की अनुमति नहीं दे सकती थी। फिर भी उसे निशाना लगाने की तीव्र इच्छा थी। इस स्थिति में विचार ने दिमाग को चलाया और दिमाग ने शरीर को नियंत्रित किया, जिससे मरे ग्रीन ने एक असाधारण तीर चलाया। हालांकि मरे ग्रीन की मानसिक शक्ति अभी अपर्याप्त है। उस आश्चर्यजनक तीर के बाद वह बहुत थक गया था और दर्द सिर्फ एक प्रतिक्रिया थी। वह कुछ आराम के बाद ठीक हो जाएगा। थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा आराम करो। जब तुम बेहतर महसूस करोगी तो हम सीधे स्कूल चले जाएंगे। पानी पीने के बाद मरे ग्रीन ने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़े पेड़ के सहारे झुक गया, दर्द को रोकने के लिए अपने दांत पीस रहा था। अनजाने में वह सो गया। ये देखकर राइन ग्रीन ने अपना सिर हिलाया, ठहाका लगाया, फिर उस तेंदुए की ओर देखने लगा जिसे मरे ग्रीन ने हृदय में गोली मारी थी, अपनी तलवार उठाई और उसके पास चला गया। अपने सपने में मरे ग्रीन एक धुंधले भूरे रंग के स्थान पर पहुंच गया। वह अपने सामने स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, इसलिए वह बस भागता रहा, लेकिन वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया या अंत तक नहीं पहुंच पाया, जिससे वह हताश महसूस करने लगा। लेकिन तभी बारबेक्यू जैसी जलती हुई चर्बी की गंध उसके नथुनों में घुसी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हू, मरे ग्रीन ने अपने सपने में गहरी सांस ली और जाग गया। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि राइन ग्रीन मांस भून रहा था और जंगल हरा भरा था। यह महसूस करते हुए कि यह सिर्फ एक सपना था, मरे ग्रीन ने अपना सिर रगड़ा और पाया कि दर्द काफी कम हो गया था और अब उसकी हरकतों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तुम जाग रहे हो, मेरा भुना हुआ मांस लगभग तैयार है, तुम छोटे बदमाश, तुम गन से नहीं जागे, है ना? हे, तुमने सही अनुमान लगाया। मुझे देखने दो कि यह पक गया है या नहीं। भुना हुआ मांस खाने के बाद मरे ग्रीन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। फिर राइन ग्रीन द्वारा छीली गई और गेंद की तरह लपेटी गई तेंदुए की खाल को लेकर वह राइन ग्रीन के पीछे पहाड़ से नीचे उतरा। ध्यान कक्षा। ध्यान शिक्षक लिंडन बिल पोडियम पर क्रॉस लेग करके बैठे थे। उनके नीचे एक मैजिक एरे पैटर्न बहते पानी की तरह झिलमिला रहा था और उनका मुंह ऐसे हिल रहा था जैसे कुछ बुदबुदा रहे हों। अजीब बात यह थी कि पूरी कक्षा एकदम शांत थी, कोई आवाज नहीं थी। मंच के नीचे मरे ग्रीन ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान विधि को सुन रहे थे जिसे शिक्षक लिंडेन समझा रहे थे। शिक्षक लिंडेन की आवाज स्थिर और स्पष्ट थी, लेकिन अचानक उसने देखा कि टीचर लिंडेन की आवाज की मात्रा बदल गई, जिसने मरे ग्रीन को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अवचेतन रूप से अपना पूरा ध्यान टीचर लिंडेन की आवाज पर केंद्रित कर दिया। शिक्षक लिंडेन ने ध्यान विधि को कुछ और बार दोहराया, इससे पहले कि मरे ग्रीन को एहसास हुआ कि आवाज वास्तव में स्थिर थी। ये बिल्कुल एक मछली की तरह थी जो मरे ग्रीन के शरीर के अंदर लगातार तैर रही थी। जब यह उसके सिर की ओर तैरती थी तो आवाज तेज होती थी, जब यह उसके ऊपरी शरीर की ओर तैरती थी तो आवाज थोड़ी धीमी होती थी, और जब यह उसके निचले शरीर की ओर तैरती थी तो आवाज और भी धीमी हो जाती थी। ओह वाह, ये ध्वनि वास्तव में मेरे शरीर के अंदर तक जा सकती है। इस घटना को जानने के बाद मरे ग्रीन को तुरंत इसमें दिलचस्पी हो गई। उन्होंने अपना ध्यान एकाग्र करके शिक्षक लिंडेन की आवाज पर नजर रखने की तैयारी कर ली। कुछ ही देर में शिक्षक लिंडेन ने एक बार फिर ध्यान विधि का पाठ पूरा किया और अगले दौर की शुरुआत की। मरे ग्रीन ने शिक्षक लिंडेन की आवाज को अपने सिर में गूंजते हुए सुना। उसने तुरंत अपना सारा ध्यान अपने सिर पर केंद्रित कर लिया। तभी उसे लगा कि उसका ध्यान हवा के एक अदृश्य प्रवाह से टकरा गया है। मरे ग्रीन को इस अदृश्य धारा से टकराने पर कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसे आश्चर्य हुआ कि उसका ध्यान इस अदृश्य धारा में उसी सहजता से विलीन हो गया था जैसे एक छोटी सी धारा एक बड़ी नदी में बह रही हो। यह अदृश्य धारा शिक्षक लिंडेन की आवाज का अनुसरण करती हुई उसके शरीर से लगातार बह रही थी। इसके अलावा मरे ग्रीन ने महसूस किया कि यह अदृश्य धारा धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे अनगिनत सहायक नदियां यांगिजी नदी में बह रही थी और अंततः अपनी सारी शक्ति लेकर समुद्र में जा गिरी। और इस समय अदृश्य धारा भी अपनी एकत्रित शक्ति को लेकर मरे ग्रीन के सिर की ओर लौट रही थी और बलपूर्वक उस धूसर स्थान की ओर बढ़ रही थी जिसे मरे ग्रीन कुछ हद तक परिचित पा रहा था। जैसे ही यह धारा आगे बढ़ी, मूल रूप से शांत धूसर स्थान अचानक अशांत हो गया। इस धूसर स्थान का तल जमीन नहीं बल्कि एक महासागर था, एक धूसर महासागर। यह मानसिक स्थान और मानसिक महासागर था। अपने आसपास की हर चीज को देखते हुए मरे ग्रीन को अचानक एहसास हुआ कि वह वास्तव में मानसिक स्थान और मानसिक महासागर को देख सकता है और समझ गया कि अदृश्य धारा उसकी मानसिक शक्ति थी। अब वह आंतरिक दृष्टि कर सकता था, हालांकि पहले तो यह अभी भी धुंधला धुंधला और बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन इससे मरे ग्रीन भी बहुत उत्साहित हो गए। आंतरिक दृष्टि के साथ वह अपने शरीर के अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, जिससे उन्हें अनगिनत चक्करों से बचने में मदद मिली। तभी ध्यान विधि द्वारा निर्देशित मानसिक शक्ति की एक धारा मानसिक महासागर से अलग हो गई। मरे ग्रीन ने देखा कि यह पहले से अलग रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। अंततः मानसिक शक्ति की एक बड़ी मात्रा को लेकर दूसरे प्रवेश द्वार से मानसिक महासागर में प्रवेश कर रही थी, जिससे धीरे धीरे शांत हो रहे मानसिक महासागर में एक और लहर जुड़ गई। एक अज्ञात अवधि के बाद मरे ग्रीन ने कुछ पैटर्न की खोज की। एक पूर्ण ध्यान पद्धति 3 चक्रों का प्रदर्शन कर सकती थी और 3 चक्रों के अंत बिंदु जब जुड़े होते थे तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते थे। प्रत्येक चक्र के साथ मानसिक शक्ति बढ़ती जाती थी, हालांकि यह मानसिक महासागर की तुलना में बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं थी। अपने मानसिक महासागर को व्यापक बनाने के लिए उसे इसे संचित करने में बहुत समय लगाना पड़ता था। बेशक मानसिक शक्ति में वृद्धि बिना किसी कीमत के नहीं हुई। प्रत्येक चक्र के साथ बढ़ी हुई मानसिक शक्ति क्रमिक रूप से कम होती गई, जबकि थकान की भावना बढ़ती गई। यानी बाद के चक्र में प्राप्त मानसिक शक्ति पिछले चक्र की तुलना में कम थी, लेकिन थकान अधिक थी। इन पैटर्नों की खोज करके मरे ग्रीन को यह समझ में आ गया कि खेती कैसे की जाए। क्लास के बाद थके हुए मरे ग्रीन ने कैफेटेरिया में मॉन्स्टर बीस्ट 2 का एक हिस्सा ऑर्डर किया। जैसे ही शोरबा उसके मुंह में गया, मरे ग्रीन को लगा कि उसका पूरा शरीर आराम कर रहा है और उसकी थकान काफी कम हो गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे सबसे बड़े भाई ने कहा कि राक्षस जानवर का मांस साधना के लिए एकदम उपयुक्त है, और मुझे अपने शरीर को मजबूत करने के लिए जितना संभव हो सके राक्षस जानवर का मांस खाने को कहा, जो साधना में सहायक होगा। एक संतोषजनक भोजन के बाद अपने पेट में राक्षस जानवर के स्टू का एक कटोरा लेकर मरे ग्रीन ने जम्हाई ली, नींद महसूस की। वह जल्दी से आराम करने के लिए अपने छात्रावास में लौट आया, अंधेरा होने तक सोता रहा और फिर राक्षस जानवर के मांस का एक और भोजन खाया। इस समय ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरपूर मरे ग्रीन अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गए। एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे सांस छोड़ी। ध्यान विधि का मौन पाठ करते हुए मरे ग्रीन आंतरिक दृष्टि की स्थिति में प्रवेश कर गए। उन्होंने सावधानीपूर्वक अपनी मानसिक शक्ति को मानसिक महासागर से एकत्रित किया। मानसिक शक्ति की एक छोटी सी गेंद को उन्होंने अलग कर दिया। शायद किसी जादुई सरनी की सहायता के बिना ये स्वयं अलग की गई मानसिक शक्ति बहुत स्थिर नहीं थी और कुछ हद तक बिखरी हुई भी थी। एक पल तक देखने के बाद मरे ग्रीन ने अपने दांत पीस लिए और ध्यान विधि का उपयोग करके इसे एक चक्र में ले गया। जैसे ही यह चक्र में प्रवेश किया, उसकी चिंताएं सच हो गईं। मानसिक शक्ति की यह गेंद न केवल बढ़ने में विफल रही, बल्कि चक्रण प्रक्रिया के दौरान बिखर भी गई। मानसिक शक्ति जहां भी गुजरी, मरे ग्रीन को सिर्फ अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई। अंत में मानसिक शक्ति की यह गेंद पूरी दूरी का सिर्फ पांचवां हिस्सा ही तय कर पाए और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। ये देखकर मरे ग्रीन को एहसास हुआ कि एक अच्छा प्रशिक्षक कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग खुद से सीखते थे, वे वाकई प्रतिभाशाली लोगों में सबसे प्रतिभाशाली थे। हालांकि उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाला और ध्यान पद्धति का संचालन फिर से शुरू कर दिया। यह एक छोटा सा झटका था, वह इसे संभाल सकता था। पुनः सक्रिय मरे ग्रीन ने मानसिक शक्ति की एक और गेंद को अलग किया। शायद पहले प्रयास के अनुभव को आधार बनाकर इस बार मानसिक शक्ति बहुत अधिक ठोस हो गई थी और आगे तक चली गई थी। तीसरी बार, इस बार यह बहुत आसानी से आधे तक पहुंच गया। इससे मरे ग्रीन को बहुत प्रोत्साहन मिला। चौथी बार, पांचवी बार, अंततः सातवें प्रयास में उन्होंने जो मानसिक शक्ति अलग की थी, उसने पूरी यात्रा पूरी कर ली, यद्यपि उसमें से बहुत थोड़ी ही बची। लेकिन सफलता तो अंततः सफलता ही है, इसलिए मरे ग्रीन ने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया, मानसिक शक्ति को अलग कर दिया और दूसरा चक्र शुरू किया। पहला प्रयास तुरंत एक तिहाई तक पहुंच गया। पांच प्रयासों के बाद दूसरा चक्र पूरा हो गया। लगातार दो चक्र पूरे करने के बाद मरे ग्रीन की हालत ऐसी हो गई थी मानो उन्होंने मेंटोस खा लिया हो। हालांकि वे थक चुके थे, लेकिन वे रुक नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने तीसरा चक्र शुरू किया और तीन प्रयासों के बाद तीसरा चक्र पूरा हो गया। अरे हाँ, मरे ग्रीन पहली बार स्वतंत्र रूप से ध्यान पूरा कर रहे थे, बहुत उत्साहित थे। उन्होंने अपनी मुठियां भींच ली और खुशी से बिस्तर से उछल पड़े, दो बार और उछले। हालांकि उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि रात बहुत हो चुकी थी और जोर से चिल्लाना अनुचित व्यवहार था, इसलिए उन्होंने तुरंत रुक गए। लेकिन उसकी खुशी बेकाबू थी। मरे ग्रीन ने अपने हाथ फैलाए, अपना मुंह बंद किया और अपनी रजाई में लिपटे हुए बिस्तर पर चुपचाप हंसने लगा। फिर वह एक कैटरपिलर की तरह रजाई में इधर उधर लुढ़कने लगा। मैं सफल हो गया, मैं अंततः स्वयं ध्यान करने में सफल हो गया। भले ही मैं कोई महान प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो, लेकिन कम से कम मुझे एक छोटा प्रतिभाशाली व्यक्ति तो कहा ही जा सकता है, मरे ग्रीन ने ठहाका लगाया। जैसे ही उसका मन शांत हुआ, वह आखिरकार अपनी थकान को दबा नहीं सका और चेहरे पर मुस्कान लिए गहरी नींद में सो गया। मुरे, जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हें क्लास के लिए देर हो जाएगी। निक ब्राउन ने मरे ग्रीन के छात्रावास के कमरे का दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया, लेकिन काफी देर तक खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई हलचल न होने पर वह नाराज हो गया और उसने दरवाजे पर एक दो बार जोर से लात मारी। मुरे, दरवाजा खोलो, तुम में एक कुलीन महिला को चुपके से अंदर लाने की हिम्मत है, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं है। जल्दी करो और मुझे अंदर आने दो। ठीक है, तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो, है ना? मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए छात्रावास प्रबंधक को बुलाया। क्या? कमरे के अंदर से मरे ग्रीन की कमजोर आवाज आई। बहुत देर हो गई मरे, अब तुम डर गए हो, लेकिन तुम पहले क्या कर रहे थे? रुको, मैं तुम्हें पूरे स्कूल में मशहूर कर दूंगा। ये कहते हुए निक ब्राउन ने प्रस्थान का नाटक करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया और जल्द ही दरवाजा खुल गया। निक ब्राउन, जो चंचल भाव से दरवाजे की ओर गौर से देख रहा था, जब उसने मरे ग्रीन का चेहरा देखा तो चौंक गया। मरे ग्रीन पीला पड़ गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर काले घेरे बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हे भगवान, तुमने सच में एक कुलीन महिला को चुपके से अंदर घुसा दिया। मुझे देखने दो कि वह कौन है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, निक ब्राउन छात्रावास के कमरे में घुस गया और मरे ग्रीन के शयन कक्ष में भाग गया। उसकी आंखें बिस्तर पर टिकी थीं, जिसे कल रात मरे ग्रीन ने अस्त व्यस्त तरीके से उलट पलट कर दिया था। उसके भाव बदल रहे थे, ईर्ष्या, जलन और घृणा। अच्छा अच्छा, बदमाश, तूने चुपचाप इतना बड़ा काम कर दिया। कौन था वह? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अपनी आंखें रगड़ते हुए, जम्हाई लेते हुए और अभी भी चक्कर महसूस करते हुए मरे ग्रीन सवालों से भरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि निक ब्राउन क्या बकवास कर रहे थे। ओह चलो, तुम अभी भी यहाँ मूर्ख बन रहे हो। बताओ मुझे, क्या ये बेरिल पीटर था? उस दिन तुम दोनों के डांस करने के बाद उसने मुझसे तुम्हारे बारे में भी पूछा, जब तुम वीकेंड पर नहीं थे। तुम दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे से जुड़ गए। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मरे ग्रीन पूरी तरह से हैरान था। निक ब्राउन के सवालों से उसका सिर और भी चक्कर खा रहा था। उसने असहाय होकर कहा, तुम कौन सी पहेलियां पूछ रहे हो? क्या तुम ठीक से बोल नहीं सकते? और इसका बेरिल पीटर से क्या लेना देना है? मैंने उसे उस भोज के बाद से नहीं देखा है। हुकअप से तुम्हारा क्या मतलब है? भले ही मुझे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह न हो, लेकिन तुम उस पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत मत करो। हम उसके बारे में कुछ बातें कहो और तुम उसका बचाव करना शुरू कर दोगे। प्रतिष्ठा की बात करो, तुम दोनों की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अगर मैं उसे यहाँ नहीं पकड़ पाया तो मैं कक्षा में जाऊंगा और देखूंगा कि वह वहां है या नहीं। अगर वह नहीं है तो हे। इसके साथ ही निक ब्राउन तेज गति से कक्षा की ओर दौड़ पड़ा। वह बेरिल पीटर को पकड़ने के लिए तैयार था, जो कथित तौर पर मरे ग्रीन के छात्रावास से भाग गया था। निक ब्राउन 100 मीटर की स्प्रिंट गति से इतिहास की कक्षा में भाग गया। इतिहास एक बड़ी व्याख्यान कक्षा थी जिसमें 100 से अधिक छात्र थे और बेरिल पीटर भी इस कक्षा में उपस्थित थे। जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुआ, निक ब्राउन की आंखें बिजली की तरह सभी के चेहरों को तेजी से स्कैन कर रही थीं। वह नहीं, वह नहीं, वह नहीं, वह नहीं, हाँ, वह नहीं, वह नहीं। हे, एक साधारण मरे को लगता है कि वह मुझसे यह बात छिपा सकता है। वे नहीं जानते कि मैं अंडरवर्ल्ड में दिव्य नेत्र जासूस के रूप में जाना जाता हूँ। ये रहस्य मुझे उससे 1 साल का भोजन दिलवाएगा। हम रुको। निक ब्राउन, जो अभी भी इस रहस्य का लाभ उठाकर मरे ग्रीन को पूरी तरह से अपने घेरे में लेने के बारे में सोच रहा था, उसे अचानक एक चेहरा याद आया जिसे उसकी आंखों ने अभी अभी देखा था। ये बेरिल पीटर नहीं हो सकता। मैंने अभी अभी उसे अवश्य ही भुला दिया होगा। जैसे ही मैं अपना सिर घुमाऊंगा, मैं पाऊंगा कि यह निश्चित रूप से बेरिल पीटर नहीं था। अपने आप को सांत्वना देने के बाद निक ब्राउन ने एक गहरी सांस ली और कठिनाई से अपना सिर पीछे किया। तभी उसने देखा कि सुंदर वेशभूषा में सजी बेरिल पीटर अपनी सीट पर सीधी बैठी हुई थी और कुछ जिज्ञासा से उसकी ओर देख रही थी, जबकि वह दरवाजे पर निश्चल खड़ा था। असंभव। निक ब्राउन अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाने के कारण अवचेतन रूप से चिल्लाया और पूरी कक्षा की निगाहें निक ब्राउन की ओर मुड़ गईं। उसके पीछे वह छात्र जो निक ब्राउन को हटने के लिए कहना चाहता था, वह भी दंग रह गया। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा, फिर भी आप इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? आप दरवाजा रोक रहे हैं और आपको लगता है कि आप सही हैं। उसके पीछे बैठे छात्र ने उस लंबे कद वाले व्यक्ति को देखा और उसे पता चल गया कि निक ब्राउन एक अर्ल का बेटा है। उसकी बंद मुट्ठी आखिरकार ढीली पड़ गई और वह एक गलत भाव के साथ कक्षा में घुस गया। उसके पीछे खड़े छात्रों ने भी ऐसा ही किया। ये दृश्य देखकर कक्षा में उपस्थित सभी लोगों की निगाहें निक ब्राउन की ओर तिरस्कार से भर गईं। ये निक ब्राउन वास्तव में परिसर में बदमाशी कर रहा है। वह पूरी तरह से अमानवीय है। आह, मुझे माफ करें, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मैंने अभी कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं चौंक गया, मुझे माफ करें। निक ब्राउन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत माफी मांगी। उसकी माफी सुनकर कक्षा में मौजूद लोगों की नजरें नरम पड़ गईं, हालांकि अभी भी कुछ संदेह था। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए निक ब्राउन ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी, अपना सिर रगड़ा और महसूस किया कि आज वह कितना बदकिस्मत था। उसने मरे की छोटी पूंछ पकड़ने का इरादा किया था, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को लगभग एक तिरस्कृत चूहे में बदल दिया। निक ब्राउन ने एक कोने वाली सीट ढूंढी और दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। उसकी नजर बेरिल पीटर पर थी। उसने उसके बेहतरीन मेकअप पर ध्यान दिया, जिसे बनाने में एक कुशल हाथ को भी कम से कम आधा घंटा लग सकता था। वह मरे ग्रीन के छात्रावास से कक्षा में 5 मिनट से भी कम समय में पहुंच गया था, तो मरे ग्रीन के कमरे में कौन था? या क्या वहां वास्तव में कोई और नहीं था? असंभव। आज उसने खुद को बहुत मूर्ख बना लिया था। अगर वह मरे की कमजोरी को नहीं समझ पाता तो वह कैसे उबर पाता? ये सोचते हुए निक ब्राउन मुस्कुराए और उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। निक ब्राउन के इर्द गिर्द बैठे छात्र पिछली हलचल के कारण चुपचाप उसे देख रहे थे। जब उन्होंने निक ब्राउन को ऐसी डरावनी मुस्कान दिखाते देखा तो वे तुरंत डर गए और बिना कहे सहमति से अपनी सीट बदल ली और निक ब्राउन से दूर रहने का फैसला किया। उफ, ये निक इतनी तेजी से क्यों भागा? इसने मुझे उठने में भी मदद नहीं की। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं फिर कभी इस तरह ध्यान नहीं लगाऊंगा। अपने शरीर को इतना कमजोर महसूस करते हुए मरे ग्रीन पछतावे से भर गया। कल रात ध्यान पूरा करने पर जोर देने के लिए लगातार अपने अतीत को कोसता रहा। वास्तव में सिर्फ 2 चक्र पूरे करना ही ठीक होता। मरे ग्रीन लड़खड़ाते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़े और आखिरकार कक्षा की घंटी बजने से ठीक पहले कक्षा में पहुंच गए। वह कक्षा के दरवाजे से अंदर घुसे, इधर उधर देखा, खाली सीट ढूंढने की कोशिश की। खैर खैर, उसने देखा कि निक ब्राउन कोने में बैठा हुआ उसे घूर रहा था। खिड़की के पास पिछली पंक्ति में राजा की मातृभूमि। उसने वह स्थान कैसे छीन लिया? और सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके आसपास वास्तव में बहुत सारी खाली सीटें थीं, इसलिए मरे ग्रीन निक ब्राउन की ओर बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वह आधे रास्ते तक पहुंच पाता, एक जानी पहचानी आवाज ने उसे आवाज दी। मुरे, यहाँ एक खाली सीट है। यह आवाज सुनकर मरे ग्रीन ने बेरिल पीटर की ओर देखा। उसने देखा कि उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे और उसने जिन खाली सीटों का जिक्र किया था उन पर उसकी बगल में बैठी उसकी बहनों ने जगह बना ली थी। इस पर मरे ग्रीन केवल इतना ही कह सके, इन महान महिलाओं का फिगर बहुत अच्छा है। बेरिल पीटर को देखते हुए, जो शर्मा रहा था और शर्मीला था लेकिन फिर भी उचित आचरण बनाए रखा था, और फिर निक ब्राउन को देखते हुए जो उसे गौर से देख रहा था, मरे ग्रीन ने आसानी से अपना चुनाव कर लिया। मेरे लिए सीट सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद। बेरिल पीटर के बगल में बैठे हुए पिछले व्यक्ति की गर्माहट अभी भी स्टूल पर बनी हुई थी और वह अपने बगल से आती हुई खुशबू को सूंघ रहा था। ताज़ा, समस्या तो है, निश्चित रूप से समस्या है। निक ब्राउन, दोनों की पीठ को गौर से देखते हुए, धीरे से अपने आप से कुछ बुदबुदाया, लेकिन मरे ग्रीन, जो उसकी निगाह का विषय था, अनजान था, क्योंकि उस समय उसे अपनी पलकें पहाड़ों की तरह भारी महसूस हो रही थीं, जो किसी भी क्षण गिरने के लिए तैयार थीं। लेकिन वह केवल कसकर पकड़ सकता था, क्योंकि अगर ये दो पहाड़ गिर गए तो वह निश्चित रूप से कक्षा में सो जाएगा, और अगर वह सो गया तो उसे नहीं पता था कि सफेद बालों वाला बूढ़ा जादू शिक्षक अपना हाथ उठाएगा और एक फायरबॉल मंत्र डाल देगा, उसे मौके पर ही जला देगा। ये सोचते हुए पहले से नींद में डूबे मरे ग्रीन अचानक जाग गए और काफी तरोताजा महसूस करने लगे। आखिरकार मानव क्षमता असीम है, और जब तक आप इसका दोहन नहीं करते आपको पता नहीं चलता कि यह कितनी गहरी है। थोड़ा अधिक सचेत होकर मरे ग्रीन ने अपना सिर उठाया, अपनी कोहनियां मेज पर टिकाई और सीधे इतिहास के अध्यापक की ओर देखा जो व्याख्यान दे रहे थे। प्राचीन काल में जादूगरों की शक्ति का मुख्य स्रोत रक्त और मांस था। उस समय उन्होंने ईश्वर के दूत का अध्ययन किया और पाया कि ईश्वर के दूत के रक्त में चमत्कारी शक्ति थी, इसलिए उन्होंने कक्षा की बातें सुनते हुए मरे ग्रीन को फिर से उनिंदापन महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने इससे संघर्ष किया। उनकी पलकें लड़ रही थीं, लेकिन तभी एक सफेद कागज जिस पर कुछ लिखा था धीरे धीरे बगल से गुजरा। ओह, एक छोटा सा नोट। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि बेरिल पीटर, जिसने उसे नोट दिया था, शिक्षिका को ध्यान से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह ध्यान से सुन रही थी। मरे ग्रीन के होंठ मुड़ गए और उसके पीले चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। दिलचस्प है, ये युवावस्था है, ये सचमुच अच्छा लगता है। इस वजह से मरे ग्रीन, जिनकी आत्मा पुनः सक्रिय हो गई थी, ने तुरंत अपना आसन सीधा किया, अपनी सीट पर सीधे बैठ गए, अपनी बाजुओं के बीच सफेद कागज को छिपाया और आगे की ओर मुंह करके खड़े हो गए। वह भी एक अच्छे छात्र की तरह ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उसने नीचे देखा और सफेद कागज पर लिखा हुआ देखा। आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या तुम्हें कल रात ठीक से नींद नहीं आई? ये सही है, कल रात मैं साधना में डूबा हुआ था और खुद को इससे मुक्त नहीं कर सका। अपनी कलम उठाते हुए मरे ग्रीन ने जवाब दिया। ये वाक्य लिखने के बाद उसने अपनी बांह को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे उसके और डेस्क के बीच एक गैप रह गया, और सफेद कागज इस गैप से गुजरते हुए बेरिल पीटर के पास पहुंच गया। सफेद कागज को महसूस करते हुए उसने चुपके से उसे अपने सामने खींच लिया। हे, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे विश्वास नहीं होता, तुम झूठ से भरे बदबूदार आदमी हो। तुम्हारी ध्यान विधि शायद अभी तक पूरी तरह याद भी नहीं हुई है और तुम साधना की बात कर रहे हो। स्कूल शुरू हुए सिर्फ एक सप्ताह और दो दिन ही हुए थे और उनके पास सिर्फ दो ध्यान कक्षाएं थीं। उनमें से ज्यादातर छात्रों ने, जिनमें वह भी शामिल थी, अभी तक ध्यान विधि को ठीक से याद भी नहीं किया था। ध्यान विधि के बिना जल्दबाजी में की गई साधना निश्चित रूप से विफल हो जाएगी। अगर वह सफल हो जाता तो वह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति होता जो अपनी खुद की ध्यान विधि बना सकता था। एक सामान्य व्यक्ति ने ध्यान पद्धति का निर्माण किया, इतिहास में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी नहीं हुआ। जब लोग अब जादूगरों के बारे में बात करते हैं तो वे कहते हैं कि वे खूनी और क्रूर हैं, लेकिन एक निर्विवाद बात यह है कि वे साधकों के कुलपिता हैं, कुछ वर्तमान साधना विधियों के स्रोत हैं और सत्ता पर मानवता के अपने नियंत्रण की शुरुआत हैं। हालांकि पहले सुपरह्यूमन ईश्वर के संदेशवाहक थे, लेकिन व्यापक शोध से पता चलता है कि ईश्वर के संदेशवाहक केवल मजबूत जनजात आध्यात्मिक शक्ति और उच्च जादुई आत्मीयता वाले इंसान थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके शरीर में बड़ी मात्रा में जादुई कण जमा होते गए, जिससे उनके भौतिक शरीर में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। जो सफल हुए वे ईश्वर के दूत बन गए, असफलता का मतलब निश्चित मृत्यु था। हालांकि ये स्वर्ग द्वारा व्यवस्थित किया गया था, जिसमें स्वर्ग ही तय करता था कि ईश्वर का दूत कौन बनेगा। जादूगर वे लोग थे जो ईश्वर के दूत नहीं बने थे, लेकिन उनकी शक्ति को अपने पास रखना चाहते थे। उन्होंने ईश्वर के दूत का अध्ययन किया और शोध के विवरण को याद रखने के लिए उन्होंने सभी प्रक्रियाओं को नोटबुक में दर्ज किया। व्यापक शोध के बाद कुछ शोधकर्ता हमेशा सही विचार या विधियां खोजने में कामयाब रहे। फिर वे इन विधियों को अलग अलग व्यवस्थित करते और उन्हें अपने साथ ले जाते। उनकी मृत्यु के बाद की पीढ़ियों ने उनकी प्रयोगात्मक नोटबुक प्राप्त की और इन नोटबुक के माध्यम से उन्होंने शक्ति भी प्राप्त की। ये साधना विधियों का सबसे प्रारंभिक रूप था। बाद की पीढ़ियों ने मूल नींव पर निर्माण करते हुए अपना शोध जारी रखा या अन्य साधना विधियों से प्रेरणा लेकर नई विधियां बनाई। इसने बाद के प्राचीन अराजक जादू युग की नींव रखी। कक्षा की बात सुनकर मरे ग्रीन ने श्वेत पत्र लिया और बेरिल पीटर ने जो लिखा था उस पर हंस पड़े। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक बदबूदार आदमी हूँ? उस रात तुम मेरे बहुत करीब थे। थोड़ी सी चिढ़ाने के बाद उन्होंने लिखना जारी रखा। मैं एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। मात्र ध्यान विधि को समझना आसान है। जबकि उसके ज्यादातर सहपाठियों को ध्यान विधि याद भी नहीं थी, उसने न सिर्फ पूरी विधि याद कर ली थी बल्कि खुद भी सफलतापूर्वक ध्यान लगाया था। अगर वह प्रतिभाशाली नहीं था तो कौन था? और एक सुंदर लड़की के सामने कौन थोड़ा घमंड नहीं करता? लेकिन उसने जो कहा वह पूर्ण सत्य था। बस ये था कि बेरिल पीटर मरे ग्रीन की पूर्ण सत्यता से सहमत नहीं थे। बकवास, तुम बहुत बदबूदार आदमी हो, तुमसे बदबू आती है। उस रात तुम्हारे साथ नाचते हुए मैंने पूरी सांस रोक रखी थी, वरना तुम्हारी बदबू से मैं बेहोश हो जाता। आप कहते हैं कि आपने ध्यान विधि पूरी तरह से याद कर ली है, लेकिन मैं इस पर तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि आप पूरी ध्यान विधि को कागज पर लिखकर मेरे सामने नहीं रख देते। मरे ग्रीन ने तुरंत लिखा, आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि ध्यान विधि को बोलकर नहीं बताया जा सकता है और लिखते समय इसे भूलना आसान है। फिर भी आप मुझसे ध्यान विधि को लिखने के लिए कहते हैं। आप अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे परवाह नहीं। अगर तुम इसे लिख नहीं सकते तो इसका मतलब है कि तुमने इसे पूरी तरह याद नहीं किया है और तुम साधना की बात कर रहे हो। ईमानदारी से बताओ, तुमने कल रात क्या किया? पंक्तियों के बीच प्रकट हुई मधुरता और शरारत को देखकर मरे ग्रीन का मुंह खुला का खुला रह गया। मिस बेरिल, जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो आप एक शांत और सुंदर बड़ी बहन की तरह थीं। ऐसा कैसे हुआ कि कुछ दिनों के बाद आप एक अलग व्यक्ति की तरह हो गईं? क्या आप कृपया वापस वैसी ही हो सकती हैं जैसी आप थीं? हालांकि एक पल सोचने के बाद मरे ग्रीन को समझ में आया, चाहे वह कितनी भी शांत और सुंदर बड़ी बहन क्यों न हो, 16 साल की उम्र में भी वह युवा और मनमोहक थी। वे आगे पीछे चले गए और जल्दी ही दोनों तरफ से सफेद कागज भर गया। जब वह भर गया तो उन्होंने दूसरा सफेद कागज लगा दिया। इतिहास के शिक्षक के व्याख्यान के दौरान मरे ग्रीन बेरिल पीटर के साथ बुद्धि युद्ध में डूबे हुए थे, अपनी थकान को भूल रहे थे और अपनी तंद्रा को नजरअंदाज कर रहे थे। उनके पीछे निक ब्राउन, जो उन दोनों पर नजर रख रहा था, ने बहुत पहले ही उनकी इस घृणित हरकत को जान लिया था कि वे गंभीरता से पढ़ाई करने का दिखावा करते हुए चुपके से छेड़खानी कर रहे थे। लानत है, मरे, दो दिन बाद तुम बच्चे मुख्य समूह को कैसे छोड़ गए? डोंग डोंग डोंग, कक्षा समाप्ति की घंटी बजी और मरे ग्रीन, बेरिल पीटर, उसकी सहेली और निक ब्राउन भोजन के लिए एक साथ कैफेटेरिया में गए। भोजन के बाद निक ब्राउन मरे ग्रीन के सोफे पर टेढ़े होकर बैठ गए। उनकी टांगें एक दूसरे पर टिकी थीं और वे मरे ग्रीन को जांचती हुई निगाह से देख रहे थे। ईमानदारी से बताए, कल रात क्या वह आपके कमरे में थी? अगर वह नहीं थी तो कौन था? बोलिए, या अपने चाचा को असभ्य होने के लिए दोष मत दीजिए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये सिर्फ मैं ही था। अब मरे ग्रीन को आखिरकार समझ में आ गया कि निक ब्राउन आज सुबह इतना अजीब क्यों था। उसने उसे समझाया कि उसकी वर्तमान थकान साधना के कारण थी और उसका बिस्तर गंदा था क्योंकि वह सफलतापूर्वक साधना करने के बाद इतना उत्साहित था कि उसने खुद ही उसे गंदा कर दिया। जहां तक उसकी विशिष्ट साधना प्रगति का सवाल है, उसने इसका खुलासा नहीं किया। आपके पास कारण और सबूत हैं, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। हे, जो मर्जी आए, जो सोचना है सोचो, मैं झपकी लेने जा रहा हूं। जाते समय दरवाजा बंद करना याद रखना। मरे ग्रीन ने अपनी आंखें घुमाई, समझाना छोड़ दिया, जिम्हाइली और बेडरूम में चले गए। उन्होंने बेडरूम का दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर लेट गए और तुरंत गहरी नींद में सो गए। जागने के बाद मरे ग्रीन ने आदतन राक्षस जानवर के मांस का एक टुकड़ा खाया, फिर सोफे पर बैठ गया, कुछ उग गया, ये सोचकर कि आज रात क्या करना है। खेती करो, लेकिन उसे आज की खेती के कारण होने वाली दर्दनाक स्थिति याद आ गई। खेती मत करो, अभी अभी जागा है तो इतनी लंबी रात कैसे गुजारेगा। अंततः मरे ग्रीन ने अपने दांत पीस लिए। मैं अभी भी कुछ समय तक खेती करूंगा, लेकिन मुझे आज खेती के समय को नियंत्रित करना होगा, अन्यथा कल ये दर्दनाक होगा। अपना मन बना लेने के बाद वह बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और फिर से साधना करने लगा।
चूंकि उन्होंने कल ही 3 पूर्ण चक्र पूरे कर लिए थे और अपने अनुभव के साथ स्वतंत्र ध्यान करने में सक्षम थे, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा और उन्होंने दिन का पहला ध्यान पूरा कर लिया।
स्थिति पहले ध्यान से बेहतर है, मानसिक शक्ति अधिक बनी हुई है। मैं बस यह नहीं जानता कि मैं ध्यान शिक्षक के निर्देशानुसार अपनी मानसिक शक्ति को कब बढ़ाना शुरू कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह।
लेकिन ये पूरी तरह से नुकसानदेह नहीं है। मरे ग्रीन ने अपना हाथ उठाया, मुट्ठी बींची और 2 बार आगे की ओर मुक्का मारा, जिससे उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति में थोड़ी वृद्धि महसूस हुई। यद्यपि ध्यान विधि मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए है, साधना प्रक्रिया के दौरान शरीर भी निष्क्रिय रूप से कुछ सुधार प्राप्त करता है, क्योंकि जब मानसिक शक्ति शरीर के भीतर प्रवाहित होती है तो ये शरीर से ऊर्जा खींचती है, साथ ही शरीर को संयमित भी करती है, आराम और पोषक तत्वों की खुराक के साथ एक जादूगर की शारीरिक शक्ति धीरे धीरे आम लोगों से आगे निकल जाएगी।
बेशक इसकी तुलना उन योद्धाओं से नहीं की जा सकती जो अपने शरीर को मजबूत बनाने में माहिर हैं। पहला चक्र पूरा हुआ, दूसरा चक्र पूरा हुआ, तीसरा चक्र पूरा हुआ, ध्यान पूर्ण हुआ। मरे ग्रीन ध्यान से अधिकाधिक परिचित होते हुए दिन का अपना दूसरा ध्यान पूरा कर लिया और ध्यान का प्रभाव पहले की तुलना में बेहतर था और ध्यान का समय भी पहले की तुलना में तेज था। मरे ग्रीन का विकास नंगी आंखों से देखा जा सकता था और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के कारण बहुत उत्साहित थे और उन्हें ज्यादा थकान महसूस नहीं हुई, इसलिए उन्होंने तुरंत दिन का अपना तीसरा ध्यान शुरू कर दिया। साधना देर तक जागने के समान है, शरीर कष्ट पाता है लेकिन आंतरिक संतुष्टि का आनंद उसे कौन अस्वीकार कर सकता है। डॉट 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 दस्तक 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 मुरे तुम हे भगवान। निक ब्राउन, जिसने फिर से मरे ग्रीन के दरवाजे पर दस्तक दी थी, उसका चेहरा एकदम बदल गया। मरे ग्रीन को देखते हुए, जिसका चेहरा कल से भी ज्यादा खराब था, वह बेडरूम में भागा और पाया कि बिस्तर बड़े करीने से बिछा हुआ था, केवल रजाई साफ नहीं थी। अफसोस, ये बेरिल पीटर नहीं है, नहीं कोई अन्य महिला सहपाठी। क्या ये कोई पुरुष सहपाठी हो सकता है? निक ब्राउन के शब्दों ने मरे ग्रीन को लगभग अचंभित कर दिया। उसकी मुठियां सख्त हो गईं। मैंने तुमसे कहा था कि यह सब कल रात मेरी मेहनत की वजह से हुआ है, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? लोगों के बीच विश्वास करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? मरे ग्रीन का सवाल सुनकर निक ब्राउन ने व्यंग्य किया और धीरे से कहा, हे शुरू में तो मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन उस भोज के बाद से तुमने मुझे धोखा देकर उन बाहरी लोगों के साथ मुसीबत मोल ले ली, जबकि तुम 13 कुलीन युवतियों के साथ नृत्य करने गए थे। अच्छा हुआ बॉल के 13वें युवा मास्टर। अफसोस, आप ऐसा नहीं कह सकते। राजकुमारी एलिजाबेथ के लिए यही आपका संघर्ष था। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया? यह आपकी नासमझी है, मरे ग्रीन ने प्रतिवाद किया। राजकुमारी एलिजाबेथ को उन बाहरी लोगों के उत्पीड़न से बचाना हमारा कर्तव्य है और आपने मरे अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया है। अधिकार कर्तव्यों के अनुरूप होते हैं, इसलिए अब से आप राजकुमारी के बारे में कोई अनुचित विचार नहीं रख सकते। मरे ग्रीन ने तुरंत सहमति जताते हुए अपना मुंह खोला। आखिरकार वह किसी भी कीमत पर घर में रहने वाला दामाद नहीं बनना चाहेगा, भले ही उसे ये सब मुफ्त में मिले, इसके लिए प्रतिस्पर्धा करना तो दूर की बात है। लेकिन फिर उसे अचानक राइन ग्रीन द्वारा दिया गया पारिवारिक मिशन याद आ गया। कुलीनों के वर्चस्व वाली इस दुनिया में परिवार कुलीनता की जड़ है, जो परिवार के सदस्यों के विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को परिवार के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और परिवार के मिशनों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एनन, कुछ देर तक विचार करने के बाद, ये याद करते हुए कि वह अभी भी परिवार के पैसे का उपयोग स्कूल के लिए कर रहा था और परिवार से सहायता प्राप्त कर रहा था, मरे ग्रीन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे एक पारिवारिक मिशन मिला है और मुझे लगता है कि आपको भी मिला होगा। हम अभी परिवार से भाग नहीं सकते या पारिवारिक मिशन की अवहेलना नहीं कर सकते। ये सुनते ही निक ब्राउन आग बबूला हो गया और उसने सीधे दोनों हाथ बढ़ाकर मरे ग्रीन की गर्दन पकड़ ली और जोर से चिल्लाया, उस स्थिति में मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा, हे मरे। दुर्भाग्य से तुम मेरे पहले पराजित प्रतिद्वंद्वी हो गए, मर जाओ। इससे मरे ग्रीन डर गया। उसने सुना था कि यह युद्ध भयानक है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह इतना भयानक होगा। निक ब्राउन, जो मूल रूप से उसका रिश्तेदार और सहपाठी था, वास्तव में उसे जानलेवा हमले के इरादे से हमला करेगा। ये खत्म हो गया है, मेरा अद्भुत जीवन अभी शुरू हुआ है। लेकिन जल्द ही यह महसूस करते हुए कि निक ब्राउन केवल सतही तौर पर उग्र था और वास्तव में बल का प्रयोग नहीं कर रहा था, मरे ग्रीन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और महसूस किया कि यह आदमी बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था, मजाक कर रहा था। इससे उसे राहत मिली और उसने भी मजाक में चिल्लाकर कहा, तुम घृणित निक, भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं दया की भीख नहीं मांगूंगा, मुझे पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैं शुद्ध और सुंदर राजकुमारी एलिजाबेथ के लिए मर रहा हूँ। भले ही तुम मुझे मार डालो, मरे, अब हजारों हजारों मरे उठ खड़े होंगे, क्योंकि उत्तर और राजकुमारी हमेशा जीवित रहेंगे। दोनों किशोर मस्ती करते हुए, बेपरवाही से खेलते हुए, जल्दी से शिक्षण भवन में पहुंच गए। वे कक्षा में चले गए, अपनी सीटों पर सीधे बैठ गए, खुद को संभाला और फिर से असली युवा रईसों की तरह दिखने लगे। आज की कक्षा जादुई पौधों और जानवरों से परिचय कराने वाली थी, जिसे लेवल 5 पोषण मास्टर सिमोना लिंडे द्वारा पढ़ाया गया था। मरे ग्रीन पर टीचर सिमोना का गहरा प्रभाव था। सुंदर, उत्तम, शक्तिशाली, समृद्ध। जल्द ही क्लास की घंटी बजी और सभी लोग सीधे बैठ गए, टीचर सिमोना के आने और पढ़ाने का इंतजार करते हुए। लेकिन तभी जादुई लबादा पहने एक सुडौल युवक लकड़ी का बक्सा पकड़े हुए कक्षा में आया। इस व्यक्ति को देखकर मरे ग्रीन को कुछ जाना पहचाना सा लगा। कुछ देर याद करने के बाद उसे याद आया, क्या ये वही सीनियर नहीं था जिसे छात्र सेवा क्षेत्र में भेड़िए बेचने वाले सीनियर ने भेड़िए जैसी आंखें दी थी। वह इस कक्षा में क्यों था? अगर उसे सही याद है तो इस व्यक्ति का नाम था। नमस्ते सभी को, मेरा नाम पैडी ब्रूनो है। मैं इस वर्ष का सीनियर हूँ, टीचर सिमोना का छात्र हूँ और एक पोषण मास्टर भी हूँ। इस बिंदु पर पैडी ब्रूनो ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान बिखेरी, अपनी छाती को फुलाकर अपना सिर ऊपर उठाया, जिससे उसकी छाती पर लगे दोनों पदक और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे। एक द्वितीय स्तरीय जादूगर पदक और एक स्तर एक पोषण मास्टर पदक। आज शिक्षिका सिमोना औषधियों को परिष्कृत कर रही हैं और आपको पढ़ाने के लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इस कक्षा के लिए स्थानापन्न करने की व्यवस्था की है। मेरा ज्ञान और अनुभव शिक्षिका सिमोना जितना समृद्ध नहीं है, इसलिए कक्षा के दौरान यदि आप में से किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपना हाथ उठाकर पूछ सकते हैं और मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। पैडी ब्रूनो ने चारों ओर देखा और कोई उपद्रवी न पाकर आगे कहा, तो फिर चलो आज कक्षा शुरू करते हैं। मरे ग्रीन गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी कोहनियां मेज पर टिकी थीं और दोनों हाथ थोड़ी के नीचे बंधे हुए थे। राइन ग्रीन ने पहले बताया था कि उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन उस समय उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ आगंतुक था जो मरे ग्रीन के शरीर में रह रहा था। इसलिए राइन ग्रीन और अन्य लोगों के सामने उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उन्हें पता न चल जाए कि वह असली मरे ग्रीन नहीं है। उस समय उन्होंने इसे ही असहजता माना था। हालांकि आज सुबह निक ब्राउन ने अचानक हमला किया, और हालांकि यह सिर्फ एक मजाक था, मरे ग्रीन को सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस समय नरक के द्वार से गुजरा हो। उनका वर्तमान शरीर उनकी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में कुछ कमजोर था, और इसका कारण मरे ग्रीन की जन्मजात कमी थी। काउंटेस की देखभाल और प्रशिक्षण के बाद ही वह सुरक्षित रूप से इस आयु तक पहुंच सका। इसलिए भले ही उनके शरीर में ध्यान द्वारा वृद्धि हुई थी, यह एक संचयी प्रक्रिया थी और इतने कम समय में सुधार नगण्य था, जबकि निक ब्राउन का शरीर उनसे कहीं अधिक बड़ा और मजबूत था। यदि निक ब्राउन उस समय मजाक नहीं कर रहा होता और सचमुच उसे मारना चाहता होता तो शायद उसकी सचमुच मौत हो जाती। अब उसे अपनी सीट पर चुपचाप बैठे हुए मत देखिए, लेकिन मरे ग्रीन के मन में भय व्याप्त था। राइन ग्रीन ने पहले जिस बेचैनी की बात कही थी वह उनके भीतर गहराई में दबी हुई थी जो अब सामने आ गई थी। मरे ग्रीन तो व्याख्यान सुनने के लिए भी अनिच्छुक हो गए थे। उन्होंने अपनी तंद्रा पर काबू पाया और अपने विचारों को व्यवस्थित करने लगे। उस दुनिया में हालांकि वह कड़ी मेहनत करता था और ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता था, फिर भी उसे ऐसी कोई बेचैनी नहीं थी, क्योंकि वह अपने दम पर जीवित रह सकता था। वह बहुत अच्छी तरह से तो नहीं रह रहा था, लेकिन काफी अच्छा था। इसके अलावा उस दुनिया में कोई युद्धाभा या जादू नहीं था, हर कोई एक साधारण व्यक्ति था। लोग तब मरते हैं जब उन्हें मारा जाता है, इसलिए चाहे कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, धनवान या ताकतवर क्यों न हो, वह फिर भी साधारण ही है और यदि उसे मार दिया जाए तो वह मर जाएगा। इसलिए भले ही वह प्रत्यक्ष लड़ाई में जीत न पाता, लेकिन हताश होकर एक के बाद एक छिपकर हमला करने का विचार ही उसके लिए आत्मसुखद था, और यह सुख उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि यह एक बेकार जीवन था, लेकिन इस दुनिया में युद्ध आभा और जादू के अस्तित्व के कारण लोगों के बीच की खाई बहुत बड़ी थी। कुछ लोग यद्यपि मानव कहलाते हैं, यदि वे चुपचाप खड़े रहें और किसी साधारण व्यक्ति को उन पर हमला करने दें या प्रतिरोध न करें और स्वयं को मरने दें, तो भी कोई साधारण व्यक्ति उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन लोगों को साधक कहा जाता था और आम लोगों के सामने वे मानव त्वचा में राक्षस थे। मेरे हाथ में ग्रीन लैंटर्न ग्रास है, जो एक निम्न स्तर का जादुई पौधा है जो आमतौर पर नदियों के किनारे या दलदली क्षेत्रों में उगता है। परिपक्व होने पर ग्रीन लैंटर्न घास 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी पूरी तरह से हरी होती है और सामान्य खरपतवार के समान दिखती है। हालांकि एक बार परिपक्व होने पर यह रात में हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका नाम ग्रीन लैंटर्न घास पड़ा। लेकिन इसकी परिपक्वता अवधि केवल 3 दिन है, 3 दिन बाद यह मर जाएगा। इसलिए मंच पर पैडी ब्रूनो ने एक खरपतवार जैसी हरी लालटेन घास को उठाया और व्याख्यान दिया, जबकि मरे ग्रीन ने नीचे अपना आसन बदल दिया। उनका बायां हाथ उनकी ठोड़ी को सहारा दे रहा था और दायां हाथ मेज पर टिका हुआ था, जिसमें उन्होंने कलम पकड़ी हुई थी, और वे इस तरह लग रहे थे मानो कक्षा में नोट्स ले रहे हों। लेकिन अब उसका ध्यान कक्षा में नहीं था, वह जीवन के एक बड़े निर्णय पर विचार कर रहा था। इन मानवरूपी राक्षसों का सामना करते हुए मरे ग्रीन, जो अभी भी एक साधारण व्यक्ति था, चिंता से भर गया। उसे डर था कि कहीं वह गलती से इन राक्षसों द्वारा मारा न जाए। हमें ये जानना चाहिए कि उनकी वर्तमान शुरुआत काफी शानदार थी और इस तरह से मरना बहुत बड़ी क्षति होगी। इसलिए ध्यान विधि का सामना करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ अभ्यास किया, न केवल ताकत पाने की शक्तिशाली भावना के कारण, बल्कि शायद उनकी आंतरिक बेचैनी के कारण भी। आज सुबह निक ब्राउन के मजाक ने उसके दिल में बेचैनी पैदा कर दी, जिससे उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का स्पष्ट रूप से पता चल गया। यानी वह बहुत कमजोर था, कमजोर और असहाय, इसलिए बेचैनी। आज रात साधना जारी रखो, जब तक मैं इससे नहीं मरता, मैं मरते दम तक अभ्यास करता रहूंगा। यह विचार अचानक मरे ग्रीन के मन में आया। वह अवचेतन रूप से सिर हिलाकर अपने आंतरिक विचारों से सहमत हो गया। ओह, ये जूनियर अच्छा है, वह कक्षा में नोट्स ले रहा है और मेरी ओर देखकर सिर भी हिला रहा है। ऐसा लगता है कि मैं काफी अच्छा व्याख्यान दे रहा हूँ। पैडी ब्रूनो की नज़र इधर उधर भटक गई और उसने अचानक मरे ग्रीन को सिर हिलाते हुए देखा। वह मन ही मन जोर से हंसे, उनके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान उभर आई और उन्होंने और भी अधिक विस्तार और प्रयास के साथ व्याख्यान दिया। इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ की उसके एक इशारे से गलतफहमी पैदा हो गई है, मरे ग्रीन ने सोचना जारी रखा। साधना मुझे अधिक शक्तिशाली बना सकती है, लेकिन यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और मैं तो साधना कर ही सकता हूँ, लेकिन अन्य लोग भी साधना कर सकते हैं। अगर दूसरे लोग मुझसे ज्यादा तेजी से साधना करें और ताकतवर बन जाएं तो क्या मेरी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी? इस परिणाम के बारे में सोचकर मरे ग्रीन को थोड़ी परेशानी महसूस हुई। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में कलम पकड़ी और अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने लगे, अपनी कुंठा व्यक्त की, फिर सोचने लगे कि दूसरों से अधिक मजबूत कैसे बने। एक साधक की युद्ध शक्ति साधना स्तर, युद्ध कौशल, हथियार, कवच और औषधियों से प्रभावित होती है। साधना अभ्यास से आती है, जब तक कि बाद में वह इससे मर नहीं जाता, वह मृत्यु तक प्रशिक्षण लेता रहेगा, जिससे उसकी प्रगति अधिकतम होगी। युद्ध कौशल उसके भविष्य के सीखने से आते हैं, योद्धा की युद्ध आभा तकनीक और जादूगर का जादू सभी युद्ध कौशल हैं, इसलिए उसे सावधानीपूर्वक योजना बनाने और सीखने के लिए कुछ शक्तिशाली जादू मंत्र चुनने की आवश्यकता है। हथियार और कवच खरीदने के लिए, अच्छे जादुई डंडे और वस्त्र खरीदने के लिए, या कुछ कीमती जादुई वस्तुएं खरीदने के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है। हालांकि वर्तमान में वह परिवार का पैसा खर्च कर रहा है, जो हमेशा थोड़ा असुविधाजनक होता है, इसलिए बाद में उसे स्वयं पैसा कमाने का कोई रास्ता खोजना होगा। जैसे ही उसने पैसा बनाने के बारे में सोचा, मरे ग्रीन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उसकी बिखरी हुई निगाहें केंद्रित हो गईं और वह लेवल एक पोषण मास्टर पैडी ब्रूनो को ध्यान से देखने लगा, जो व्याख्यान दे रहा था।
इस आदमी को चीजों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और वह औषधियों को परिष्कृत भी कर सकता है, तो क्या वह पैसा नहीं कमा रहा होगा?
यदि वह पोषण मास्टर भी बन सके तो वह न केवल बाद में बहुत सारा पैसा कमा सकेगा, बल्कि स्वयं पोषण को परिष्कृत करने में भी सक्षम हो सकेगा।
तब खेती में सुधार और युद्ध में सहायता के लिए औषधियां आसानी से उपलब्ध होंगी।
मरे ग्रीन के मन में अचानक एक प्रश्न आया, वह पैसे से हथियार खरीद सकते हैं और अन्य लोग भी ऐसा कर सकते हैं।
उसके पास ऐसा कौन सा हथियार था जो दूसरों के पास नहीं था?
कुछ देर सोचने के बाद मरे ग्रीन को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका और उन्होंने सोचना ही छोड़ दिया। हालांकि फिर भी मरे ग्रीन ने बहुत कुछ समझकर राहत की सांस ली, क्योंकि उसे अपनी जीवन योजना और आगे बढ़ने का लक्ष्य मिल गया था। इसलिए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी नोटबुक में अपनी योजना को परिष्कृत और पूरक बनाने की तैयारी करने लगा। अचानक उसकी पुतलियां इस तरह हिली मानो भूकंप आ गया हो और उसने चौंककर उस नोटबुक की ओर देखा जिस पर उसने पहले कुछ लिखा था और देखा कि उस पर एक बंदूक तानी हुई थी। इस बंदूक को देखते हुए मरे ग्रीन को अपनी जादुई क्रिस्टल बंदूक की याद आई और फिर उन बंदूकों के कई ब्लूप्रिंटों की याद आई जिन्हें उसने जला दिया था। इस दुनिया ने आग्नेयास्त्रों का विकास किया था, लेकिन उन्हें युद्ध आभा और जादू ने कुचल दिया, जिससे अंततः आग्नेयास्त्र विकास में ठहराव आ गया। हालांकि उनकी मूल दुनिया में केवल आग्नेयास्त्रों का ही विकास किया जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप कई शक्तिशाली हथियारों का निर्माण हुआ जो जादू से कमतर नहीं थे। यदि वह इन हथियारों का निर्माण कर सकता था, नहीं, उसके पास वह क्षमता नहीं थी और इस विश्व के पास वह औद्योगिक आधार नहीं था। तो फिर अगर मैं इस दुनिया के ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने मूल विश्व के शक्तिशाली हथियारों को जादुई तरीके से संशोधित करूं, तो क्या मैं इस दुनिया के लिए शक्तिशाली हथियार बना सकता हूं जो मेरे लिए अद्वितीय हों? मरे ग्रीन की आंखें उत्साहपूर्ण प्रकाश से चमक उठी। कक्षा के बाद मरे ग्रीन, जिन्होंने निक ब्राउन के साथ दोपहर का भोजन किया था, छात्रावास में वापस नहीं लौटे बल्कि स्कूल के पुस्तकालय में चले गए। अर्ल ग्रीन के अध्ययन की तुलना में एलिस अकादमी की लाइब्रेरी बड़ी थी, जो 1000 वर्ग मीटर में फैली हुई थी और 3 मंजिलों वाली थी। पहली मंजिल पर कागज की किताबें और कुछ सार्वजनिक अभिलेख थे जिन्हें छात्र मुफ्त में देख सकते थे। दूसरी और तीसरी मंजिल पर किताबें और ज्ञान रखा हुआ था जिसे आम लोग नहीं पढ़ सकते थे। केवल जादूगर या योद्धा बनकर ही कोई ऊपर जा सकता था और ऐसा कहा जाता था कि वहां की किताबें मुफ्त में नहीं देखी जा सकती थी, उन्हें पढ़ने के लिए सोने के सिक्के या अकादमी योगदान अंक देने पड़ते थे। हालांकि मरे ग्रीन को उन पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी जिन्हें वह अभी तक समझ नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने पहली मंजिल पर उपयोगी पुस्तकों की खोज की और आग्नेयास्त्रों से संबंधित सभी ज्ञान की जानकारी जुटाई। कई घंटों तक ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद मरे ग्रीन को बहुत ज्यादा नींद आने लगी, जिसे वह अब और दबा नहीं सकता था। उसने लाइब्रेरी से एक दर्जन किताबें उधार ली और अपने छात्रावास में वापस आ गया, जहां वह अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। खाना, सोना, खेती करना, कक्षाओं में जाना, पढ़ना। मरे ग्रीन का हालिया जीवन नियमित और व्यस्त था। पलक झपकते ही दूसरा सप्ताह बीत गया और स्कूल का तीसरा सप्ताह शुरू हो गया। ध्यान कक्षा के दौरान मैजिक एरे की वृद्धि के साथ मरे ग्रीन की ध्यानपूर्णता की गति ने शिक्षक लिंडेन के मार्गदर्शन को भी पार कर लिया और हर बार उनके मानसिक सागर में लौटने वाली मानसिक शक्ति बहुत अधिक थी। तीसरे चक्र के अंत में मानसिक शक्ति का एक उछाल उसके मानसिक सागर में बह गया। इस बिंदु पर दूसरे चक्र के अंत के कारण होने वाले उतार चढ़ाव अभी भी बंद नहीं हुए थे और मरे ग्रीन ने अचानक एक घटना को नोटिस किया। यानी पूरा मानसिक सागर चक्रों के अंत में उमड़ने वाली मानसिक शक्ति के प्रभाव में धीरे धीरे घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। पहले तो उसने सोचा कि यह अस्पष्ट आत्मनिरीक्षण के कारण उत्पन्न भ्रम है, लेकिन कई बार ध्यान लगाने के बाद मरे ग्रीन को अंततः एहसास हुआ कि यह कोई भ्रम नहीं था। उनका मानसिक सागर वास्तव में धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन इतनी धीमी गति से कि अगर कोई ध्यान न दे रहा हो तो उसे आसानी से नहीं देखा जा सकता था। क्या चल रहा है? मरे ग्रीन ने ध्यान करना बंद कर दिया, अपनी आंखें खोली और भ्रमित होकर शिक्षक लिंडेन की ओर देखा, जो पूरी कक्षा को ध्यान में मार्गदर्शन कर रहे थे। शिक्षक लिंडेन वास्तव में एक शिक्षक थे, उनकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत थी। मार्गदर्शन पर अपनी अधिकांश ऊर्जा केंद्रित करने के बावजूद उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। ये कौन सा छात्र है? कक्षा के दौरान अपनी आंखें बंद नहीं कर रहा है और ठीक से ध्यान नहीं कर रहा है, बस आलसी है। लिंडन बिल ने अपनी आंखें खोली और तुरंत मरे ग्रीन की प्रश्नवाचक निगाहों से नजर मिलाई। वह समझ गया कि मरे ग्रीन के मन में इस समय कोई उलझन भरा सवाल था। ये छात्र मरे ग्रीन लगता है, उसकी मानसिक शक्ति काफी अच्छी है, उसे क्या समस्या है? पहली कक्षा के बाद लिंडन बिल को मरे ग्रीन के बारे में अच्छी धारणा हो गई। उन्हें लगा कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने मरे ग्रीन को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान जारी रखो, यदि तुम्हारे कोई प्रश्न हो तो बाद में मेरे मैजिक टॉवर पर आओ। अचानक अपने सिर में शिक्षक लिंडेन की आवाज सुनकर मरे ग्रीन आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान जारी रखा। मरे ग्रीन की चक्र पूरा करने की गति तेज होती गई, जिससे प्रत्येक ध्यान सत्र पिछले सत्र से छोटा होता गया। परिणाम स्वरूप मानसिक शक्ति के निरंतर प्रवाह के साथ मानसिक सागर की घूर्णन गति में तेजी आने लगी, जिससे एक भंवर का प्रोटोटाइप बन गया। मरे ग्रीन के पिछले असामान्य व्यवहार के कारण शिक्षक लिंडेन ने मरे ग्रीन पर बहुत ध्यान दिया था, लेकिन तभी उन्हें मरे ग्रीन के शरीर के अंदर से एक हल्की चूषण शक्ति निकलती हुई महसूस हुई। मानसिक गुरुत्वाकर्षण। क्या वह वास्तव में अपने मानसिक सागर को घुमाकर मानसिक गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर सकता है? अभी केवल 2 सप्ताह ही हुए हैं और उसकी मानसिक शक्ति पहले ही इस सीमा तक बढ़ चुकी है। ये वास्तव में युद्ध कानून उपयोगकर्ता की क्षमता है। नहीं, युद्ध कानून उपयोगकर्ता के लिए भी उसी चरण में उनकी मानसिक शक्ति इस छोटे से साथी जितनी मजबूत नहीं है। लिंडन बिल ने मरे ग्रीन के मानसिक गुरुत्वाकर्षण को महसूस करते हुए तुरंत समझ लिया कि मरे ग्रीन का प्रश्न क्या था। लिंडन बिल के जादुई टॉवर में मरे ग्रीन और लिंडन बिल एक दूसरे के सामने बैठे थे। लिंडन बिल ने उसे साफ पानी का एक गिलास दिया। पानी बहुत पारदर्शी था और उसमें हल्की ताजा सुगंध थी। इस सुगंध को सूंघते ही उसका थका हुआ शरीर हिलने लगा, वह पानी पीना चाहता था। यह एहसास बहुत जादुई था, इसलिए मरे ग्रीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्याला उठाया और एक घूंट लिया। साफ पानी मीठा और सुगंधित था और फिर उसने जल्दी से सारा पानी पी लिया। स्वच्छ जल पीने के बाद उसके पेट से गर्माहट निकली, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई तथा ध्यान के कारण उसके शरीर की थकान दूर हो गई। गुरुजी, ये इस स्थिति को समझते हुए मरे ग्रीन ने समझा कि यह एक अच्छी चीज होनी चाहिए, जिसका उपयोग विशेष रूप से ध्यान के बाद शरीर को फिर से भरने के लिए किया जाना चाहिए। यह एक शरीर पोषण औषधि है। ध्यान के बाद एक कप पीने से भौतिक शरीर को पुनः पूर्ति मिल सकती है। यह एक अच्छी सहायक साधना औषधि है, लेकिन आप अभी इसकी अधिक मात्रा नहीं ले सकते। अभी तुम सिर्फ 16 साल के हो, अपनी युवावस्था में साधना के लिए ये स्वर्णिम समय है। पर्याप्त आराम और भरपूर पोषण स्वास्थ्य लाभ का सबसे अच्छा और सबसे प्राकृतिक तरीका है। अगर तुम अभी ज्यादा मात्रा में लेते हो तो तुम में प्रतिरोध विकसित हो जाएगा और जब तुम्हें बाद में इसकी वास्तव में जरूरत होगी तो यह उपयोगी नहीं होगा। जैसे ही वह बोल रहा था, लिंडेन बिल ने भी शरीर पोषण औषधि का एक कप पी लिया, आह भरी और गंभीरता से कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुजी। मरे ग्रीन ने तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन लिंडेन बिल ने अपना हाथ हिलाया और उनसे बात करना जारी रखा। बेशक आप इसे बड़ी मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सभी दवाओं में कुछ विषाक्तता होती है, इसलिए दवा को लापरवाही से या अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे दवा लेने की जरूरत होती है। इसलिए जब आपका शरीर कमजोर हो जाए तो कंजूसी न करें। कुछ टॉनिक पीना और कुछ पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाना बिल्कुल सामान्य बात है, जैसा कि आपने अभी किया है। लिंडन बिल की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने मरे ग्रीन को सख्ती से देखा। दूसरे पक्ष के रवैये में बदलाव महसूस करते हुए मरे ग्रीन ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और अपनी कुर्सी पर सीधे बैठ गए। 2 सप्ताह में अभी भी बड़ी संख्या में छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ध्यान विधि को याद नहीं किया है, फिर भी आप अपने मानसिक सागर को घुमा सकते हैं, एक मानसिक बल क्षेत्र बना सकते हैं और मानसिक गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। आपकी मानसिक प्रतिभा असाधारण है, अन्य सहपाठियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है और कक्षा के बाद आप अति साधना करने से पीछे नहीं हटे हैं। यद्यपि साधना में परिश्रम पर जोर दिया जाता है, फिर भी व्यक्ति को अत्यधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए। अत्यधिक साधना सफलताओं के दौरान कभी कभार किए जाने वाले प्रयासों को छोड़कर आमतौर पर आराम के साथ संतुलित होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी साधना गति के लिए अपने शरीर को थका देना एक सार्थक प्रयास नहीं है। ये कहते हुए लिंडन बिल ने शरीर पोषण औषधि का एक और कप पी लिया और औपचारिक रूप से मरे ग्रीन के साधना प्रश्नों का उत्तर देना शुरू कर दिया। आपकी ध्यान पूर्णता की गति बहुत तेज है, जो पहले से ही मेरे मार्गदर्शन की गति से अधिक है। मैंने जो मार्गदर्शन गति निर्धारित की है वह एक मानक है। इससे धीमी गति का अर्थ है कि आपकी मानसिक शक्ति पर्याप्त नहीं है और उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। इससे तेज गति का अर्थ है कि आप साधना के अगले चरण में प्रवेश कर सकते हैं।
इस चरण को जादू आकर्षित करना कहा जाता है, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के जादुई कणों को शरीर में आकर्षित किया जाता है।
यहाँ तक कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर को उसकी सीमा तक प्रशिक्षित कर दिया जाए तो भी वह जादुई जानवरों का सामना नहीं कर सकता। इसके लिए एक सफलता की आवश्यकता होती है, मानव शरीर की सीमाओं से परे सफलता, और यह सफलता दुनिया से शक्ति प्राप्त करने से आती है।
चाहे वह योद्धा हो या जादूगर, जब मजबूत बनने के लिए उनकी अपनी शर्तें पूरी नहीं हो पाती, उदाहरण के लिए मरे ग्रीन ने अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करने के लिए अपनी शारीरिक ऊर्जा को निचोड़ लिया, लेकिन उसके शरीर की वृद्धि दर उसकी आत्मा के साथ नहीं रह सकी, जिससे उसकी कमी हो गई। हालांकि मरे ग्रीन के लिए अपने शरीर की मरम्मत में बहुत समय लगाना असंभव था, इसलिए उन्हें अन्य स्थानों से वैकल्पिक ऊर्जा खोजने की आवश्यकता थी, और इस ऊर्जा को जादुई कण कहा जाता था। जादुई कण, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच यात्रा करते हैं, एक प्राकृतिक ऊर्जा है। वे मानव शरीर से गायब ऊर्जा की पूर्ति कर सकते हैं और बाद के चरणों में मानव शरीर की ऊर्जा का एक घटक भी बन सकते हैं। जादू को आकर्षित करना जादुई कणों को आकर्षित करने का साधन है। ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक समुद्र को मजबूत और घुमाने से एक आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी से जादुई कणों को शरीर में अवशोषित करता है। यह मरे ग्रीन की साधना में अगला कदम है। इस निजी ध्यान कक्ष में ध्यान करना वास्तव में कक्षा की तुलना में कहीं बेहतर है। मरे ग्रीन ने ध्यान समाप्त करने के बाद अपनी आंखें खोली, ध्यान कक्ष से बाहर चले गए और गलियारे से आगे बढ़ते हुए जल्द ही एक काउंटर पर पहुंचे, जहां एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कुर्सी पर आंखें बंद करके आराम कर रहा था। आप बाहर हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा।
मरे ग्रीन ने अपना छात्र आईडी कार्ड निकाला और उसे ध्यान कक्ष के ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक को सौंप दिया। उन्होंने छात्र आईडी कार्ड लिया और मैजिक एरे पर उसका उपयोग रिकॉर्ड कर लिया। जब मरे ग्रीन की ध्यान की गति लिंडेन बिल की मार्गदर्शन की गति से आगे निकल गई तो उनकी सीखने की प्रगति शिक्षण प्रगति से कहीं अधिक हो गई। ऐसी प्रतिभा के लिए एलिस अकादमी न तो उनकी सीखने की प्रगति को बलपूर्वक दबा सकती थी, न ही वह शेष छात्रों की उपेक्षा कर शिक्षण प्रगति में तेजी ला सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में एक ध्यान शिक्षक मरे ग्रीन जैसे प्रतिभाशाली छात्रों को साधना हेतु स्वतंत्र ध्यान कक्ष में प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। प्रति सप्ताह 2 घंटे, प्रति माह 8 घंटे का उपयोग समय। मरे ग्रीन ने शिक्षक लिंडेन के मार्गदर्शन का पालन किया, प्रत्येक बार केवल 1 घंटे के लिए ध्यान किया, जिसका मतलब था कि वह महीने में 8 बार ध्यान कक्ष का उपयोग कर सकता था, जो कि महीने में 4 ध्यान कक्षाओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी था। ये प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एलिस अकादमी का एक विशेष लाभ भी था। ध्यान कक्ष से बाहर निकलने के बाद मरे ग्रीन पुनः शिक्षक लिंडेन के जादुई टॉवर पर गए। उन्होंने मरे ग्रीन को कुछ साधना अनुभव से मार्गदर्शन दिया। पलक झपकते ही अध्ययन का 3रा सप्ताह समाप्त हो गया। शनिवार को मरे ग्रीन अपने छात्रावास से निकलकर छात्र सेवा क्षेत्र में चले गए और एक लोहार की दुकान में प्रवेश किया। अंकल माइक की लोहार की दुकान। लोहार की दुकान में हलचल थी, हथौड़े की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। मरे ने जोर से चिल्लाया, बॉस उठाओ, क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? ओह यंग मास्टर ग्रीन, आप आ गए, आपका ऑर्डर तैयार है। सहायक की आवाज सुनकर माइक, जो काउंटर के पीछे सो रहा था, ने अपना सिर बाहर निकाला। ये देखकर कि वह कौन था, उसने तुरंत उत्साह के साथ मरे का अभिवादन किया। एक लंबा पतला आदमी जो एक साधारण व्यापारी की पोशाक पहने हुए था, उस पर शायद ही कोई मांस था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा के झोंके में गिर जाएगा। वह किसी लोहार की दुकान के मालिक की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा था। माइक अपनी आराम कुर्सी से उठा, सामने की मेज की दराज से एक लकड़ी का बक्सा निकाला उसे मरे के सामने रखा और उसे खोला। लकड़ी के बक्से के अंदर 30 छोटे धातु के सिलेंडर थे जो अंगूठे के आकार के थे, नीचे से सीलबंद थे। अगर उन्हें उस दुनिया में रखा जाता तो लगभग हर कोई उन्हें पहचान लेता, क्योंकि वे गोली के खोल थे। इन 30 गोलियों के खोलों को देखकर मरे ग्रीन की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत हाथ बढ़ाकर उनमें से एक को उठा लिया, जो छूने पर ठंडा महसूस हो रहा था, चिकना था और छूने पर हाथ नहीं कट रहा था। सावधानी से पॉलिश किया हुआ था, सिलेंडर पर कोई सिलाई नहीं थी, एक ही टुकड़े के रूप में ढाला गया था। युवा मास्टर ग्रीन, इन 30 छोटी वस्तुओं के लिए हमने विशेष रूप से एक सांचा बनाया है, कीमत हो सकती है। मुझे भी वह सांचा बेच दो। माइक का आशय समझते हुए मरे ग्रीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अपना छात्र आईडी कार्ड निकाला, सारी फीस का भुगतान किया, गोली के खोल और सांचे लिए और दुकान मालिक की विदाई के बीच वहां से चले गए। इस लोहार की दुकान को छोड़ने के बाद मरे ग्रीन कई अन्य लोहार की दुकानों पर गए ताकि वे उन भागों को खरीद सके जिन्हें बनाने का काम उन्होंने उन्हें दिया था, और भागों के मूल टेम्पलेट्स को भी अपने साथ ले गए। इन भागों को प्राप्त करने के बाद मरे ग्रीन तुरंत ग्रीन मैनर लौट आए। ये जागीर बड़ी थी जिसमें एक समर्पित लोहार क्षेत्र था जहां कुछ कृषि औजारों के साथ साथ कुछ साधारण तलवारों का निर्माण और मरम्मत की जा सकती थी। मरे ग्रीन ने एक निजी फोजिंग कक्ष का अनुरोध किया और अपने साथ लाए गए भागों को पुनः संसाधित किया। बैरल, फ्रेम, ट्रिगर, ग्रिप। मरे ग्रीन ने सभी भागों को जोड़ा और अंततः उनके हाथों से एक सरलीकृत हैंडगन का निर्माण हुआ जो रिवाल्वर जैसी थी लेकिन उसमें सिलेंडर नहीं था। ब्रीच खोलने पर ग्रिप और बैरल के बीच का कनेक्शन खुल गया जिससे गोली लोड करने का क्षेत्र दिखाई देने लगा, जो डबल बैरल शॉटगन की लोडिंग विधि के समान बहुत सरल था। गोली का खोल उठाकर मरे ग्रीन ने नक्काशी करने वाला चाकू निकाला और ध्यानपूर्वक उसके निचले हिस्से को काटा। गोली का खोल बनाने के बाद मरे ग्रीन ने जो बारूद बनाया था उसे निकाला, साथ ही गोली भी निकाली और गोली लोड की। इस गोली को उठाकर उन्होंने इसे चैम्बर में भरा, ब्रीच को बंद किया, अपने अंगूठे से स्ट्राइकर को दबाया, ट्रिगर को तैयार अवस्था में रखा, सेफ्टी को हटाया और मरे ग्रीन ने परीक्षण के लिए विशेष रूप से तैयार की गई लोहे की प्लेट पर निशाना साधा। वाह! अपनी उत्तेजना को दबाते हुए मरे ग्रीन ने बंदूक को लोहे के स्टैंड पर टिकाया, एक लकड़ी की छड़ी से ट्रिगर खींचा और गोली चला दी। टकराना, क्लैंग, एक तीखी आवाज गूंजी और उसने तुरंत परीक्षण लोहे की प्लेट की ओर देखा। उन्होंने लोहे की प्लेट की सतह पर एक गोली का छेद देखा। मरे ग्रीन ने स्थिति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और पाया कि इस 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की प्लेट में छेद नहीं किया गया था, केवल एक गड्ढा बन गया था। शक्ति थोड़ी छोटी है। ऐसा परिणाम देखकर मरे ग्रीन को मैजिक क्रिस्टल गन द्वारा लकड़ी को उड़ाने का दृश्य याद आया। एक पल के लिए विचार किया, फिर अपनी कमर से मैजिक क्रिस्टल गन निकाली, उसे दोनों हाथों से पकड़ा, ट्रिगर खींचा और मैजिक क्रिस्टल गन पर मैजिक एरे चमक उठी। बैंग बूम, परीक्षण लोहे की प्लेट सीधे इसके द्वारा उड़ा दी गई थी। हंगामा समाप्त होने के बाद मरे ग्रीन ने लोहे की प्लेट को उठाया और एक अंगूठे के आकार का छेद दिखाई दिया। जिस केंद्रीय भाग पर चोट लगी थी वह काफी हद तक पीछे की ओर क्षतिग्रस्त हो गया था। दो प्रभाव बिंदुओं के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। मरे ग्रीन ने एक हाथ में सरलीकृत बंदूक और दूसरे हाथ में मैजिक क्रिस्टल गन पकड़ी हुई थी तथा चिंतन में अपना सिर झुकाए हुए थे। प्रारंभिक फॉर्मूले के अनुसार उन्होंने जो बारूद तैयार किया था उसकी विस्फोटक शक्ति में मैजिक क्रिस्टल से बने बारूद की तुलना में बहुत अधिक अंतर था, और ये तकनीक और जादू के बीच की खाई को भी दर्शाता था। चाहे तकनीक पर कितना भी अधिक शोध किया जाए, कम समय में जादू को पकड़ना असंभव होगा। ये सोचकर मरे ग्रीन ने मैजिक क्रिस्टल पाउडर का एक छोटा सा बैग निकाला, एक छोटा सा हिस्सा अलग किया, ध्यान से इसे साधारण बारूद के साथ मिलाया और अंत में इसे एक गोली में भर दिया। चैम्बर में बंदूक लोड करते हुए मरे ग्रीन ने गोली चलाने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उन्हें लगा कि यह उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने बंदूक को लोहे के स्टैंड पर टिकाए रखा और ट्रिगर खींचने के लिए लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल किया। बैंग धप, गोली निकल गई और बंदूक का चैम्बर जोर से उछला, जिससे मरे ग्रीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इस बार पावर की जांच करने की जहमत नहीं उठाई, जल्दी से चैम्बर खोला, गोली के आवरण को बाहर निकाला और पाया कि इस अभिन्न रूप से ढाले गए गोली के आवरण में दरारें आ गई थी। गोली के खोल में दरारें पाए जाने के बाद मरे ग्रीन ने कहा, बहुत घबरा गए। उन्होंने ध्यानपूर्वक साधारण बंदूक का निरीक्षण किया और ये देखकर राहत महसूस की कि उसमें कोई क्षति नहीं हुई थी। ये साधारण बंदूक साधारण लोहारों द्वारा गढ़े गए भागों से बनाई गई थी और मरे ग्रीन ने इसे संसाधित किया, जबकि यह सतह पर अच्छा लग रहा था। जोड़ और वायुरोधीपन बहुत अच्छा नहीं था। लोडिंग चैम्बर और बुलेट के बीच फिट टाइट नहीं था, इसलिए बुलेट आवरण के टूटने से बंदूक के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। मरे ग्रीन नहीं पता था कि यह अच्छी खबर है या बुरी। वह केवल मुस्कुराने से पहले मैजिक क्रिस्टल पाउडर के साथ मिश्रित गोली की शक्ति की जांच कर सकता था। एक त्वरित नजर डालकर उसने देखा कि 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की प्लेट भी छेद दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि इसकी शक्ति मैजिक क्रिस्टल गन जितनी नहीं थी, लेकिन ये साधारण बारूद से बनी गोलियों से कहीं ज्यादा थी। ये पता चलने पर मरे ग्रीन ने मैजिक क्रिस्टल गन उठा ली और ध्यान से उसकी जांच की।
तभी अचानक उसे राइन ग्रीन की बात याद आ गई, उसे पहले क्या बताया था।
इस जादुई क्रिस्टल गन का मुख्य भाग पीतल और लाल तांबे के मिश्रण से बनाया गया था। पीतल और लाल तांबा, तो बस इतना ही। मरे ग्रीन ने एक गोली का खोल उठाया, उसे अपनी उंगली से हिलाया और उसमें से एक तीखी आवाज आई। ये सीधे पिघले हुए लोहे से ढाला गया था, इसलिए इसकी सामग्री मैजिक क्रिस्टल गन से अलग थी। इस दुनिया में तांबा लोहे से बहुत मजबूत है। इस दुनिया की मुद्रा प्रणाली तांबे के सिक्कों, चांदी के सिक्कों और सोने के सिक्कों पर आधारित है। इन तीन धातुओं को सिक्कों के लिए क्यों चुना गया और कागजी मुद्रा व्यापक रूप से क्यों जारी नहीं की गई, यह एक लंबी कहानी है। वास्तव में लान्यस साम्राज्य और यहां तक कि तीन महान साम्राज्य भी, जो इससे अधिक शक्तिशाली हैं, कागजी मुद्रा जारी की है, लेकिन इसकी स्वीकृति अधिक नहीं है। यहां तक कि तीन महान साम्राज्यों के कागजी पैसे का इस्तेमाल विदेशों में तो दूर उनके अपने नागरिकों द्वारा भी नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तीन महान साम्राज्यों ने पास अधिकार की कमी है और वे अपने स्वयं के कागजी पैसे को बढ़ावा नहीं दे सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि सोना, चांदी और तांबा अपूरणीय हैं। ये सही है, वे अपूरणीय हैं। इस जादुई दुनिया में शायद सामग्री में परिवर्तन हुआ है, या इस दुनिया का सोना, चांदी और तांबा पिछली दुनिया के धातुओं से मौलिक रूप से अलग है, और ऐसा इसलिए होता है कि इन तीन धातुओं को सोना, चांदी और तांबा कहा जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि सोना चांदी से अधिक कठोर होता है, चांदी तांबे से अधिक कठोर होती है और तांबा लोहे से अधिक कठोर होता है। एक आम किसान के औजार आमतौर पर लोहे से बने होते हैं। अगर वह चाहता है कि उसके औजार ज्यादा मजबूत या टिकाऊ हों, तो वह लोहार द्वारा उन्हें गढ़ते समय अपने औजारों में कुछ तांबा जोड़ने के लिए अतिरिक्त भुगतान करेगा। नियमानुसार एक लंबी तलवार बनाने के लिए उसमें कम से कम 1 किलोग्राम तांबा होना चाहिए, तभी उसे योग्य हथियार माना जा सकता है। हालांकि ऐसा पारंपरिक हथियार केवल आम लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। ज्यादा ताकत वाले लोग या कुछ योद्धा प्रशिक्षु ज्यादातर तांबे लोहे के मिश्र धातु से बने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें चांदी भी मिलाई जाती है। जहां तक सोने की बात है, इस दुनिया में इसे सबसे कठोर साधारण धातु सामग्री में से एक माना जाता है। इसलिए थोड़े उच्च स्तर के योद्धा सोने से बने हथियार का चयन करेंगे। इस प्रकार सोना, चांदी और तांबे में न केवल मौद्रिक गुण होते हैं, बल्कि रणनीतिक गुण भी होते हैं। सटीक रूप से कहें तो उनकी रणनीतिक विशेषताओं के कारण ही उन्हें आधार मुद्रा के रूप में चुना गया था। यदि किसी राजा के पास बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और तांबा है, तो वह बड़ी संख्या में मानकीकृत हथियार बना सकता है, जिससे उसके वित्तीय संसाधन वास्तविक युद्ध शक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। कागज का एक टुकड़ा, चाहे उस पर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, सोने, चांदी और तांबे के महत्व की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि सोने, चांदी और तांबे को नियंत्रित करने का मतलब है सत्ता को नियंत्रित करना।
कौन अपनी सत्ता दूसरों के हाथों में सौंपकर सुरक्षित महसूस करेगा? यदि अन्य देश उनकी मुद्रा का उपयोग हथियार और कवच बनाने के लिए करें, उन्हें पराजित करें तथा उनसे क्षेत्रीय रियायतें और क्षतिपूर्ति की मांग करें, तो क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक नहीं होगा?
मैजिक क्रिस्टल गन पीतल और लाल तांबे के मिश्रण से बनी है, इसलिए इसकी मजबूती बुलेट केसिंग से ज्यादा है। इसके अलावा मजबूत मैजिक एरे के साथ सक्रिय होने पर इसकी गन बॉडी की ताकत और भी ज्यादा हो जाती है, जिससे ये मैजिक क्रिस्टल विस्फोट द्वारा लाए गए विस्फोटक बल का सामना कर पाती है।
मरे ग्रीन ने हाथ बढ़ाकर मूक मैजिक एरे पैटर्न को सहलाया। वास्तव में मैजिक क्रिस्टल गन का अधिकांश मूल्य उस पर उत्कीर्ण मैजिक एरे से आता है। मरे ग्रीन की समझ के अनुसार मैजिक क्रिस्टल गन का निर्माण मूलतः लेवल 3 किमियागरों द्वारा ही किया जा सकता है, या अधिक सटीक रूप से लेवल 3 मैजिक किमियागरों द्वारा ही किया जा सकता है। हथियार बनाना शुरू में लोहारों का काम था, लेकिन कुछ लोहार इतने शक्तिशाली थे कि वे ऐसे दिव्य हथियार बना सकते थे जो लोहे को मिट्टी की तरह काट सकते थे। असाधारण तकनीकी क्षमता वाले ऐसे व्यक्तियों को कीमियागर कहा जाता था।
पारंपरिक कीमियागर लोहारों से पदोन्नत होते हैं, जो पारंपरिक हथियार और कवच बनाने में माहिर होते हैं और मूल रूप से योद्धा होते हैं। चूंकि पारंपरिक कीमियागर होते हैं, इसलिए गैर पारंपरिक कीमियागर भी होते हैं, जो जादुई कीमियागर होते हैं। ये जादूगर होते हैं जो कीमिया तकनीक का अध्ययन करने के बाद जादुई कौशल और शक्ति का उपयोग करके जादुई वस्तुओं को बनाते हैं। यदि एक अग्नि जादू की व्यूह रचना एक तलवार पर उत्कीर्ण है, तो जब कोई व्यक्ति तलवार के साथ लड़ता है, तो तलवार पर अग्नि जादू की व्यूह रचना को सक्रिय करने से तलवार में आग की लपटें उत्पन्न होंगी, जिससे दुश्मन को भयंकर अग्नि क्षति पहुंचेगी। मैजिक अल्केमिस्ट न केवल तलवारों पर मैजिक एरे को उत्कीर्ण करके उनकी मारक क्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि वे विचित्र और अद्भुत वस्तुएं भी बना सकते हैं, जैसे शांत प्रभाव वाली बालियां, जिन पर शांत करने वाली मैजिक एरे उत्कीर्ण होती है। लेवल 3 से नीचे के मैजिक अल्केमिस्ट को एंचेंटर भी कहा जाता है। वे केवल मौजूदा हथियारों में मैजिक एरे जोड़ सकते हैं। केवल लेवल 3 और उससे ऊपर के स्तर पर ही वे आइटम के शरीर को परिष्कृत करने और मैजिक एरे को उकेरने के लिए जादुई साधनों का उपयोग कर सकते हैं। ये मैजिक क्रिस्टल गन एक अनोखा हथियार है, एक गैर पारंपरिक हथियार है और इसलिए इसे केवल लेवल 3 मैजिक अल्केमिस्ट द्वारा ही बनाया जा सकता है। पारंपरिक अल्केमिस्ट परंपरागत हथियार या कवच नहीं बनाते हैं और लेवल 1 और लेवल 2 मैजिक अल्केमिस्ट के पास मैजिक क्रिस्टल गन के शरीर का निर्माण करने की क्षमता नहीं होती है। लेवल 3 मैजिक अल्केमिस्ट मैजिक क्रिस्टल गन बनाने के लिए साधारण तांबे की सामग्री का उपयोग करते हैं बनाते हैं। ये आमतौर पर अमीर व्यक्तियों द्वारा अपने परिवार के वंशजों की सुरक्षा के लिए या जादूगरों द्वारा विशेष रूप से चुपके से हमलों को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। साधारण लोहे का उपयोग करके एक साधारण व्यक्ति द्वारा बनाई गई वस्तु की कठोरता की तुलना संभवतः स्तर 3 के जादू कीमियागर द्वारा मिश्रित तांबे की सामग्री का उपयोग करके बनाए गए हथियार से कैसे की जा सकती है। अकेले उस हथियार की तो बात ही छोड़िए जिसमें जादू की एक सरणी भी उत्कीर्ण है। समस्या का पता लगाने के बाद मरे ग्रीन पास में स्थित एक लोहे की अलमारी से शुद्ध तांबे का एक टुकड़ा निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे लोहे को गलाने वाली भट्टी में डाल दिया, जिससे उसका ताप बढ़ गया और वह पिघले हुए तांबे में परिवर्तित हो गया।
ग्रीन परिवार के संस्थापक पूर्वज एक लोहार थे और ग्रीन परिवार के सदस्यों के रूप में पुराने शिल्प को त्यागना संभव नहीं था, इसलिए काउंट ग्रीन, राइन ग्रीन और मरे ग्रीन सभी के पास लोहार कौशल था।
ये सिर्फ इतना है कि मरे ग्रीन का मूल शरीर इस कला में पर्याप्त कुशल नहीं था। अपने देहांतरण से पहले वह एक भी योग्य चांदी युक्त लंबी तलवार बनाने में सक्षम नहीं था। लेकिन भले ही वह चांदी युक्त लंबी तलवार नहीं बना सकता था, तांबे के टुकड़े को पिघले हुए तांबे में बदलना मरे ग्रीन के लिए अगर आसान नहीं था तो निश्चित रूप से मुश्किल नहीं था। पिघले हुए तांबे को गोली के आवरण के सांचे में डालने और उसे ठंडा होने देने के बाद मरे ग्रीन को 5 तांबे की गोली के आवरण मिले। इन 5 आवरणों को चिकना करने के बाद मरे ग्रीन ने तांबे की गोली के आवरण का उपयोग करके एक गोली को इकट्ठा किया। गोली को हमेशा की तरह लोहे के स्टैंड पर स्थिर किया गया था तथा लकड़ी की छड़ी से फायर किया गया था।